हरे कृष्ण। जत पाद पल्लव जुगन विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सह गणाधिराज विज्ञान विहंतुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता के श्लोक में कहा जाता कि ये संसार में प्रत्येक लोग गणेश जी को पूजन करते हैं, किसके लिए? सारे बाधा विघ्न से मुक्त होने के लिए। लेकिन स्वयं गणाधिपति गणेश जी ने समस्त विघ्नों को विनाश करने के लिए जो शक्ति प्राप्त करते हैं, ये भगवान नृसिंहदेव से, जो भगवान गोविंद श्री कृष्ण का ही दूसरे रूप है। कहते कि ये गणपति ये भी सारे विघ्नों को नाश करने के लिए शक्ति नृसिंहदेव से प्राप्त करते हैं। इसलिए गणेश जी की भी आराध्य देव कौन है? नृसिंहदेव। इसलिए वैष्णव गण भक्तगण सारे भक्ति के बाधा विघ्नों को विघ्न से मुक्त होने के लिए किसको प्रार्थना करते हैं? नृसिंहदेव को। हैं, आप देखें हम प्रभुपाद जी ने इसलिए इस्कन में व्यवस्था रखा कि प्रत्येक दिन सुबह मंगला आरती के प्रांत ही तुरंत ही किसकी प्रार्थना करना? नृसिंहदेव की प्रार्थना गाना, क्योंकि ये सारे बाधा विघ्नों को नष्ट करते हैं, भक्तों के जितने भी बाधा विघ्नों को नष्ट करते हैं। तो आज ये विशेष दिन है। क्या दिन है? हैं, नृसिंह चतुर्दशी। क्या हुआ था आज के दिन? विशेष क्या घटना ऐसा हुआ था? हैं, नृसिंहदेव की प्राकट्य हुआ। लेकिन पद्म पुराण के आधार पर वो कहते कि जो हिरण्यकशिपु ने जो घोर तपस्या किया था, मंदराचल पर्वत में जाकर भगवान बनने के लिए तपस्या किया था, कौन? आज भी लोग सोचते हैं कि कुछ लोग कि तपस्या करके हम क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। हैं, हिरण्यकशिपु ने ऐसे ही सोचा था, तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके मैं भगवान बनूंगा। हैं, उसके हिरण्यकशिपु की छोटा भाई था, उसका नाम क्या था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने भी हिरण्यकशिपु के समान बड़ा प्रतापी था। हैं, और उन्होंने इतनी प्रतापी था कि पृथ्वी को लेकर कहां छुपा दिया? संपूर्ण पृथ्वी जो हम देख रहे हैं, ये जो अर्थ प्लैनेट कहते हम, ये भूलोक पृथ्वी को इतना शक्तिशाली था कि इसको उठाकर लेकर गेंद की तरफ कहां डुबा दिया? गर्भोदक सागर में, लेकिन नीचे फेंक दिया। हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि के बारे में स्वयंभू मन को उपदेश दे रहे थे, तो उस समय देखे कि वो कहे कि कहां सृष्टि का माने राज में शासन कहां करूंगा, पृथ्वी कहां है? तो ब्रह्मा जी को ध्यान में आया, तो देखे कि पृथ्वी की तो लेकर हिरण्याक्ष ने फेंक दिया गर्भोदक सागर के नीचे। तभी सारे देवता लोग ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में प्रार्थना किए, किनको? भगवान विष्णु को प्रार्थना किए, क्षीर सागर के किनारे पर जाकर पुरुष सूक्त की पाठ करके करते हुए प्रार्थना की स्तुति के माध्यम से। तो भगवान जब ब्रह्मा जी ने ऐसे सोच रहे थे कि कैसे क्या करेंगे, राक्षस तो लेकर दैत्य तो लेकर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को तो लेकर धरा को फेंक दिया गर्भोदक सागर के नीचे, तो हटात ब्रह्मा जी को बहुत जोर से छींक आया, छींक दिए तो इसके नाक से एक छोटा से आकृति से एक सुअर जैसा जीव प्रकट हो गया। लेकिन आस्ते 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 वो विशाल काय रूप धारण किया है, विशाल हाथी के समान आकाश में जाकर देखा कि इतनी विशाल रूप धारण किया है, और दिव्य अलंकार से मुकुट से विभूषित था। ऐसे अपूर्व जीव को देखकर ब्रह्मा जी ने समझ गए कि ये निश्चित रूप में भगवान का ही अवतार है। इसी प्रकार बराहा रूप से भगवान प्रकट होकर देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके गर्भोदक सागर के नीचे से किसको उठाए? समुद्र को, क्योंकि कीचड़ के अंदर कौन घुसता है? सोरी घुसता ना, भगवान इसी रूप धारण करके ही जब पृथ्वी को उठा रहे थे तो हिरण्यक्ष ने जाकर चैलेंज किया है भगवान के साथ में युद्ध करने के लिए आ गया, और आयस ने भगवान ने हिरण्यक्ष को वध कर दिया। हिरण्यक्ष की वध होने के प्रांत उसकी बड़ा भाई कौन हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ और अपने घर में इष्ट गोष्ठी बुलाया, फैमिली में परिवार में सबको बुलाया, जितने भी परिवार सदस्य थे, उसकी भाई की पत्नी और वो अपने माँ दीति, उसकी माँ और जितने उसके जो भातीजे थे, स्वयं अपने पुत्रों सबको बैठा कर एक इष्ट गोष्ठी किया। कहा कि देखो ये जो विष्णु है ये हमारा घर का शत्रु है, क्योंकि ये मेरे भाई को मर्डर कर दिया, मेरे भाई को मार डाला, इसलिए मैं आज से डिक्लार करता हूं कि जब तक मैं ये विष्णु को वध करके वापस वध नहीं कर पाऊंगा, घर में वापस नहीं आऊंगा। मैं अभी जा रहा हूं दिग्विजय में, किसके साथ लड़ाई करने में, भगवान विष्णु के साथ लड़ाई करने में। तभी घर पर त्याग कर निकाल गया हिरण्यकशिपु ने, तीनों लोक में अपने गदा लेकर है, एक गदा कांध में डालते हुए तीनों लोक में भ्रमण करके ढूंढ रहा था किसको, भगवान विष्णु कहां गया, जिसने मेरे भाई को बद्ध किया हिरण्यक्ष को। इतनी प्रतापी था, उसके भय से देवता लोग ने भी छुप जाते थे, इंद्रादि देवता लोग ने छुप गए। सर्वत्र भ्रमण करते करते देखा कि क्षीरसागर तक गया और भगवान को कहीं दर्शन नहीं किया, भगवान तो उसी के हृदय में बैठे हुए थे। भगवान कहाँ रहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, सभी हृदय में बैठे हुए, और उसी के हृदय में भी बैठे हुए थे, किसके हृदय में, हिरण्यकशिपु के हृदय में। लेकिन हिरण्यकशिपु भगवान कहाँ है ढूंढ रहा था चारों साइड, विष्णु कहाँ है, जाकर क्षीरसागर में दिखाई नहीं पड़ा था उसको भगवान को। भगवान सबको थोड़ी दर्शन देते हैं, नाहं प्रकाश सर्वत्र जोग माया समावृतः, भगवान जो जोगमाया शक्ति के द्वारा स्वयं को छुपे रहते, स्वयं छुप जाते हैं, राक्षसों को मूर्खों को दर्शन नहीं देते। लेकिन हिरण्यकशिपु कहा कि देखो तीनों लोक में भ्रमण करते हुए मैं तो विष्णु को कहीं देखा नहीं, इसलिए वो डिक्लार कर दिया गॉड इज डेड, भगवान का क्या हो गया। आज भी राक्षस लोग जो ऐसे सोचते, जो राक्षस प्रकृति के लोग है वो भी ऐसे ही सोचते हैं, कोई भगवान नहीं है, ये सब हिरण्यकशिपु के चेले हैं। हिरण्यकशिपु भी कहा कि संसार में और भगवान बल्कि कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूं, डिक्लार कर दिया है? तो इसी प्रकार उन्होंने फिर भी जानता था कि ऐसा डिक्लार कर देने से मैं भगवान तो भगवान नहीं बन सकता हूं, कुछ करना पड़ेगा, तपस्या करके ही ऐसे कुछ योग शक्ति को हासिल करूंगा और फिर भगवान बन जाऊंगा। क्योंकि भगवान ने सभी लोग कहे कि सभी लोग तो विष्णु को भगवान कहते थे, लेकिन इसको तो ढूंढते ढूंढते सारे तीनों लोग देख लिया, कहीं मिला नहीं, विष्णु तो कहीं नहीं है, जैसे कोई हिरण का नाभि में कस्तूरी हो जाता है, बहुत सुगंध व्याप्त होता है, तो वो ये सुगंध कहाँ आ रहा है कि भागते रहता कौन हिरण ने, उसी के शरीर से जो सुगंध आता है उसको पता नहीं लगता, वो घूमते घूमते पागल हो जाता है, जिसकी नाभि से कस्तूरी हो जाता तो हिरण पागल हो जाता है। हिरण्यकशिपु का स्थिति ऐसा ही हुआ कि भगवान उसके हृदय में बैठे हुए थे। नृसिंह पुराण में कहते कि हिरण्यकशिपु तो इतने बड़े विशाल इतने बड़े उद्धत राक्षस था और उसकी पुत्र कौन प्रहलाद जैसे महाभागवत वैष्णव कैसे बने, साधारण बाप जैसा कहते हैं, बाप जैसा बेटा भी ऐसा ही होता है, बाप से बढ़कर बेटा होता है, तो बाप तो इतना बड़ा राक्षस था हिरण्यकशिपु, उसका पुत्र प्रहलाद ऐसे महान भक्त कैसे बना। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं तपस्या करके ही, तपस्या के बल पर मैं ये प्रकृति का नियम को पूरा बदल दूंगा, मैं कभी वृद्ध नहीं होऊंगा, सब समय क्या रहूंगा जवान रहूंगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको जीत लूंगा। ऐसा ही सोचकर घोर तपस्या करने के लिए प्लान बनाया। अपने पत्नी कयाधु को कहा, देखो मैं जा रहा हूं कहां, मंदराचल पर्वत में तपस्या के लिए। जब तक मैं भगवान नहीं बनूंगा तब तक वापस नहीं आना मुझे है? लेकिन नारद मुनि ने अपने मित्र पर्वत मुनि को साथ में लेकर वहां पर पहुंच गए, पक्षी के रूप धारण करके, तोता के रूप धारण करके एक वृक्ष में बैठे दोनों। जब हिरण्यकशिपु ने तपस्या करने के लिए एक पैर में बाएं पैर की एक अंगूठा के सहारा पर खड़ा होगा, खड़ा होकर दोनों हाथ को ऊर्ध्व को किया, ऊपर को देखते हुए। राक्षस लोग कोई गुरु गुरु नहीं बनाते, वो तपस्या ऐसा ही करते, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको पता है कि गुरु के बिना भक्ति नहीं होता है। ध्रुव महाराज ने तपस्या किया लेकिन नारद जी को गुरु बनाया है। प्रहलाद भी गुरु बनाया, किसको? नारद जी को। गुरु के बिना भक्ति नहीं होता, लेकिन तपस्या नहीं होता, प्रारंभ नहीं करते वैष्णव जन। लेकिन हिरण्यकश्यप कोई गुरु फुरु स्वीकार नहीं किया, सीधा गया, बस खड़ा हो गया है वो मंदराचल पर्वत में, और ऊपर को ऐसा ही ऊर्ध्व मुख करके ही एकाक्षर ब्रह्म जपने लगा। क्या? ओम ओम ओम। मायावादी लोग ऐसे ही जपते हैं, ऐसे ऊपर को ऊर्ध्व मुख करके जप। लेकिन उसी समय ये जो तोता दोनों बैठे हुए थे, नारद जी और पर्वत मुनि, तोता बनकर बैठे थे, वे लोगों ने बोलने लगे, नारायण 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 नारायण। हिरण्य कैसे बोला कि अरे कौन है मेरा शत्रु का नाम ले रहा, मैं तपस्या करने आया, मेरा शत्रु का नाम कौन उच्चारण कर। क्रोधित होकर देखा, चारों साइड देखा तो देखा कि दोनों पक्षी है। बोला कि तपस्या, परे उनको भागाने के लिए कोशिश किया तो भाग गए, वो तो उड़ के चले गए, बस चले गए। फिर ये जो फिर आंख बंद कर फिर ऊपर को ऐसे ही करके फिर शुरू किया है अपना तपस्या, शुरू करता ऊर्ध्वमुख करके, फिर वो पक्षी दोनों आ जाते। फिर क्या किए, फिर बोलने लगे, नारायण नारायण नारायण। क्रोधित होकर ऐसे बार बार हो गया, दिन भर सुबह से शाम तक ऐसे ही होते रहा वो, बार बार तो वो पक्षियों को भागते भागा दे रहा, लेकिन पक्षी फिर आ जाते थे, फिर नारायण नारायण कहते थे। वो कोई साधारण पक्षी नहीं थे, नारद मुनि और पर्वत मुनि स्वयं पक्षी तोता बनकर आए थे। बोला कि आज घर से जो निकाला मुहूर्त ठीक नहीं था है? हम देखते हैं घर से बाहर निकालने के टाइम कभी कभी कहते हैं ज्योतिष का माने पंजिका से मुहूर्त देखकर निकालते हैं, तो है कि मुहूर्त ठीक नहीं था, आज वापस जाता हूं, दोबारा फिर घर से निकलना पड़ेगा, अच्छा मुहूर्त देखकर निकलना पड़ेगा घर से, ऐसा सोचकर वापस आ गया। कौन? हिरण्यकशिपु। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बोले थे आप? बोले थे कि वो जब तक भगवान नहीं बनेंगे वापस नहीं आएंगे, तो एक दिन में वापस आ गए, सुबह गए थे शाम को वापस, कैसा हो गया, अब भगवान बन गया ना क्या है? कि बोले नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं निकालने का टाइम सुजोग ठीक नहीं था है? आज का जो मुहूर्त ठीक नहीं था सुबह निकाला, इसलिए दोबारा मुझे स्टार्टिंग करना पड़ेगा, थोड़ा आशीर्वाद भी लेना पड़ेगा शुक्राचार्य से, और ठीक मुहूर्त में निकालूंगा। लेकिन क्यों आप वापस आए, क्या हुआ? मैं क्या कहूं, मैं तपस्या करने जो प्रारंभ कर रहा था तो दो पक्षी कहां से आ गए, पर उड़ते उड़ते आ गए दो तोता, और कहने लगे क्या, नारायण नारायण नारायण। कोई अधू तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे राक्षस हिरण्यकशिपु के मुख से क्या भगवान नारायण के नाम, इसकी तो अशेष कोटि पाप, जितने भी पाप किया था कई जन्म जन्मांतर से समाप्त तो हो गए, क्योंकि आभास नाम ले रहा, भगवान के नाम ले रहा, क्या नारायण 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 कह रहा। कयाधु ने यह सुजोग से सोचा कि इसी मुहूर्त से इसकी मति अभी भगवान की में लगा हुआ है, और हिरण्यकशिपु के अंतकरण में नारायण 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 शब्द का ध्वनि खड़ी झनकार रहा था, उसको निकाल नहीं पाता था, क्योंकि ये नारद जी के मुख से ध्वनि उच्चारण हुई है, पक्षी के रूप में साधारण कोई व्यक्ति नहीं था, कौन था, स्वयं नारद मुनि थे। नारद मुनि के सुन एक प्रकार की तो दीक्षा हो गया, नारद मुनि ने नारायण नारायण बोले तो सुन लिया, इसको निकालना चाहता था निकालता नहीं था उसकी मन से, और बार बार कयाधु ने भी पूछ रही थी कि वो दोनों पक्षी ने क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, बार बार पूछ रहे थे तो हिरण कभी बार बार कहता था कि क्या कह रहे थे, नारायण 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 है। तो ये सुजग में उस रात्रि में कयाधु के साथ सहवास किया हिरण्यकश्यपु ने, इसलिए उसकी मति संपूर्ण रूप में कहा था, मति पूरे नारायण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस था, यदि यह दुर्दांत राक्षस था, लेकिन नारद जी की ऐसा ही योजना था कि नारद जी जानते थे कि हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में कौन आने वाला है, प्रह्लाद। इसलिए नारद मुनि की इच्छा से और हिरण्यकश्यपु कयाधु के गर्भ में जो वीरजपात किया और दूसरे दिन सुबह फिर अपने तपस्या के लिए निकाल गए घर से, लेकिन उस रात्रि संपूर्ण रूप में कृष्ण भावना हावित होने के कारण हिरण्यकश्यप की ओरोस से जो पुत्र जन्म हुआ वो महान भक्त बना। इसलिए प्रभु जो स्त्री और पुरुष दोनों संभोग के समय बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने कहते थे कि जो गृहस्थ जीवन में यदि कोई कृष्ण भावना भावित संतान चाहता है, भक्त चाहता है, तो उसको कितने माला जपना चाहिए, 50 माला कम से कम है, क्योंकि दिन भर जैसे कृष्ण 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 मति जैसा विषय में नहीं जाएगा। तो अभी तो किसी वैष्णव को जो जीवात्मा विशेष जीवात्मा को आकर्षित करके ही पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही नृसिंह पुराण में कहा गया कि हिरण्यकश्यपु महान राक्षस होने के कारण भी नारद जी की इच्छा से इसको ऐसे ही भक्त पुत्र प्राप्त हुआ, कौन, प्रह्लाद। और लेकिन हिरण्यकश्यपु तो फिर चला गया और कठोर तपस्या किया देवताओं की वर्ष में, 100 साल तक तपस्या किया। देवताओं की वर्षा हमारी तरफ नहीं है, हमारा जब 1 साल बीत जाता है, 365 दिन बीत जाता है, तो देवताओं की सिर्फ 1 दिन होता है, हमारा 365 दिन और 365 रात बीतने से देवताओं की 1 दिन 1 रात होता है, 24 घंटा होता है उनकी। ऐसा ही देवता लोग देवताओं की वर्ष में कठोर तपस्या के 1000 साल तक, सॉरी हमारे मनुष्य गणना के आधार पर लगभग 36,000 साल तक वो तपस्या करते रहा, कौन, हिरण्यकश्यपु। सत्ययुग में था, सत्ययुग की परमायु कितने होता जीवों और लोगों के, 1,00,000 साल। कठोर तपस्या किया और उसके तपस्या की इतनी उग्र तपस्या किया कि उसके शरीर से प्राय सब चिट्टियां सब घिर गए हैं, चिट्टियां उसके शरीर में घिर कर उसके शरीर के सारे मांस को, इसके चमड़े को, इनके जो मेद खून सब को चाट लिए, तब भी विचलित नहीं हुआ। हमारा शरीर में थोड़ी कोई चिट्टी कोई यहां से घुस जाता, थोड़ा काट देने से विचलित हो जाते हम, लेकिन हिरण्यकश्यपु की तपस्या देखिए, ये चिट्टियां उसके शरीर को काटे के काटे नहीं, काटे काट के इसके मांस को खा गए पूरे शरीर को, केवल अस्थि कंकाल रह गया है, स्केलेटन केवल, तब भी वो विचलित नहीं हुआ, तब भी खड़ा था ऐसा ही उग्र तपस्या। उसी ऐसे ऊर्ध को मुख करके ही एक अंग बांह पैर की अंगुष्ठा की सहारा पर केवल दोनों हाथ को ऊर्ध कर ऐसे ही ऊर्धमुख होकर खड़ा था। उसी से तपस्या के बल पर इसकी खपड़ी से क्या निकालने लगा, अग्नि है, इतनी अग्नि निकालने लगा, ज्योति निकाल, वो आकाश में व्याप्त होने लगा धुआं के साथ विशाल विशाल रूप से, यहां तक कि स्वर्ग के देवता लोग ने भयभीत हो गए, ऐसे लग रहा था कि अग्नि के उत्ताप में तीनों लोक भस्म हो जाएगा। राक्षसों को पता है यदि कोई बलवान होना चाहता है, शक्तिशाली बनना चाहता है, प्रभावशाली बनना चाहता है, क्या करना पड़ेगा उसको, तपस्या। आप यदि भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हो क्या करना पड़ेगा, तपस्या। कौन सा तपस्या, एकादशी व्रत है। हिरण्यकश्यपु देखो कितने सालों तक पानी पिए बिना निर्जल खड़ा रहा, और हमको तो 1 दिन निर्जल आपदा से उपवास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जैसे नृसिंह चतुर्दशी का व्रत है, ये नृसिंह चतुर्दशी की व्रत यदि कोई निर्जल पालन कर लेता है, निर्जल व्रत रखता है, पानी भी नहीं पीता है, रात्रि जागरण के साथ भगवान नृसिंह देव की भजन करता है, वो समस्त बाधा विघ्न से मुक्त हो जाता है। कहते कि 1,000 द्वादशी व्रत के फल उसको प्राप्त हो जाते हैं, महाद्वादशी व्रत। ऐसे एकादशी व्रत तो होता, लेकिन कभी कभी एकादशी और द्वादशी एक साथ में आने से वो महाद्वादशी कहते हैं, उस व्रत का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे 1000 बार महाद्वादशी व्रत फल जो पालन करने से जो पुण्य होता है, सुकृति होता है, एक नृसिंह चतुर्दशी व्रत को यदि निर्जल रात्रि जागरण के साथ कोई पालन कर लेता वो उसको प्राप्त हो जाता है। यही तपस्या है। हिरण्यकशिप की तरफ इतना घोर उग्र तपस्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तपस्या किए बिना कोई भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकता, पावरफुल शक्तिशाली नहीं बनता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई यदि भक्त भी इसी प्रकार तपस्या करता है, निर्जल एकादशी व्रत रखता है, नृसिंह चतुर्दशी व्रत को निर्जल रखता है, जन्माष्टमी व्रत को ऐसा ही पालन करता है, वो भी शक्तिशाली तेजस्वी बनता है, वो भी भगवान को प्रसन्न कर लेता है। इसलिए हम हिरण्यकशिप की तरह तपस्या करने का जरूरत नहीं, लेकिन जो शास्त्र की विधि अनुजाई है, यह शास्त्र विधि उत्सुज्य वर्तते काम कारत न च सुखम मवापनति न शांति न परांगतिम। जो शास्त्र विधि को उल्लंघन करके हिरण्यकशिप की तरह तपस्या करता है उसको शांति नहीं मिलता है, ना सिद्धि मिलता है, ना अंत में भगवान की परम धाम भी प्राप्त कर पाता है। लेकिन जो शास्त्र के प्रमाण के आधार पर जो तपस्या करने के लिए कहा गया है वो तपस्या करना उचित है। इसलिए हिरण्यकशिप अशास्त्र विहित विहित तपस्या करके ही तपस्या की बल पर तीनों लोक को सताने लगा, इतनी अग्नि उसकी खपड़ी से निकले तीनों लोक को ऐसे भस्म कर देगा ऐसे लग रहा था। देवता लोग ने भाग भाग के भयभीत होकर कहां भागे, किसके पास गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने सारी स्थिति को समझे और उन्होंने चिंतन क्या करेंगे, वो भी संकित होकर भयभीत होकर उसको तपस्या से विरत करने के लिए किसको, हिरण्यकशिप को उस स्थान पर पधारे जहां हिरण्यकशिप तपस्या कर रहा था। लेकिन हिरण्यकशिप को तो शरीर तो था नहीं, वो तो केवल कंकाल, एक अस्थि का कंकाल सार उसके स्केलेटन के अंदर में केवल उसके सूक्ष्म आत्मा निवास करता था। लेकिन ब्रह्मा जी ने हंस की बहान पर आकाश से आकर ढूंढे कहां पर हिरण्यकशिप, लेकिन दादा ढूंढने के टाइम नहीं लगा क्योंकि वो धुआं निकल रहा था अग्नि के जो जहां पर निकल रहा था उसके पास में, उसको सलाम उसको आए फॉलो करते करते पास में आए, चारों साइड में सारे बांबू बांस के वृक्ष से घिर गए थे, वाल्मीकि ने हुंका बना दिए थे, उसकी बीच में हिरण्यकशिप ऐसे ही खड़ा था। कई इतनी साल बीत गया था, हजार हजार साल बीत गया था मनुष्य की गणना से। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में दिव्य जल को लेकर उसके ऊपर छिड़कने के कारण उसे जो अस्थि कंकड़ासार शरीर था वो फिर पूर्ववत मेद मांस से रक्तों से पूर्ण होकर फिर पहले जैसे हिरण्यकशिप का शरीर था ऐसा ही फिर एक नवजौवन संपन्न एक ज्योतिषमान पुरुष के रूप में वो प्रकट हो गया। कौन, हिरण्यकशिप। तभी उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी को देखा आए सामने, सोचा कि यही मेरे तपस्या की फल देने के लिए पधारे हैं सामने, इसलिए ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। कौन, हिरण्यकशिप। किस रूप में तपस्या, तब उन्होंने स्तुति किया, आम जैसे भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान कहते हैं, हिरण्यकशिप ने भी कहने लगा किसको, ब्रह्मा जी को भगवान समझने लगा और स्तुति ऐसा ही करने लगा। हम कहते कि ईश्वर परम कृष्ण सचिदा आनंद विग्रह राधे राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, लेकिन वो कहा कि ब्रह्मा ही आदि पुरुष है। ब्रह्मा जी को भगवान के रूप में स्तुति करने लगा, क्योंकि भौतिक जगत में जो लोग होते हैं राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूर्ण करते हैं उन्हीं को करने के लिए जो वरदान दे सकेंगे ऐसे ही लोगों को भगवान मानते हैं। राक्षस लोग साधन तो उसी को भगवान स्वीकार करते जो इनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, जरूरत पड़ने से जो ही वरदान दिया था उसी को भी ध्वंस करना के लिए प्रयास करते हैं। दूसरा राक्षस स्थान है ब्रकासुर, एक राक्षस रहता था बनारस में, वाराणसी में। विश्वनाथ जी को बहुत कठोर तपस्या किया और भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर तपस्या किया, शरीर से मांस काट काट के यज्ञ में डालते रहा है, नमः शिवाय करते करते। शंकर जी कहे कि अरे मैं आशुतोष हूं, ये कौन आएगा, इतने कष्ट क्यों उठा रहा, हाँ सामने पकड़ोगे, बंद करो ऐसे, इतने घोर तपस्या नहीं, क्या चाहता बोलो, मैं आशुतोष हूं, बहुत प्रसन्न हो जाता हूं थोड़े भक्ति में। कहा कि अच्छा आप जो वरदान देना चाहते हो ये वरदान दो, जिसके सिर में हाथ दूंगा वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। शंकर जी तो भोला नाथ है, क्या कहे तथास्तु। कहते ही कहा कि अच्छा पहले आपके सिर में हाथ देकर देखता हूं, बोरा आपने दिया, सोच है कि नहीं पहले आपके सिर में हाथ देख के देखूंगा। राक्षस ऐसे ही होते, जो इनको सहायता करता उसी के ध्वंस करना चाहते हैं। शंकर जी ने भागने लगे, अरे मैं वरदान दिया इसको, जिसके सिर में हाथ देगा वो भस्म हो जाएगा, अभी मेरे सिर के सिर में हाथ देकर मुझे ही भस्म करना चाहता है। किंग प्रकाश ने सोचा कि देखो शंकर जी ये तो क्या है, ये तो ऐसे घूमता है, श्मशान में रहता है, ऐसे ही अधे नंगे रहता है, भस्म विलेपन करके भटकता इधर उधर, और उसका पास में इतनी सुंदरी पत्नी कौन रहेगा, क्यों रहेगा, कौन, उमा पार्वती, इसको समाप्त करके उसको पत्नी को लेके मैं भाग जाऊंगा। राक्षसों की बुद्धि ऐसा ही होता है, उसके पीछे पीछा करने लगे भगवान शंकर जी, तो भागने लगे, और फिर उन्होंने भगवान को कृष्ण को स्मरण किया, भगवान ने सामने ब्रह्मचारी वेश धारण करी पधारे, बीच में आ गए। समुद्र मंथन में भी ऐसा ही मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने मोहित किए थे राक्षसों को, और अभी ये वृकासुर के सामने भी ऐसे प्रकट हो गए, क्योंकि क्या चल रहा है, वो भी भाग रहा है, तुम भी भाग रहे, क्या हो गया, बोले देखो देखो ये मुझे वरदान दिया, जिसके सिर में हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, लेकिन ये खुद ही भाग रहा है, मैं टेस्ट करना चाहता, परीक्षा करना चाहता हूँ, उसी के सिर में हाथ देकर परीक्षा करना चाहता हूँ, वरदान दिया ना, बोले उसी के सिर में हाथ देकर परीक्षा करूंगा, सोचे कि नहीं। भगवान कहे कि अरे तुम भी मूर्ख है, वो भी भाग रहा, तुम भी भाग रहा, तुम बड़ा मूर्ख, तुम कैसे बुद्धू बन गया, अरे ये आजकल इसका बात कोई विश्वास नहीं करता, किसका बात, शंकर जी का बात, शंकर के बाद कोई विषय नहीं, स्मशान में रहता है, भूत प्रेत के साथ में रहता है, बिच्छू सांप ये सब इसी के गले में, स्नान फान कुछ नहीं करता, क्या भस्म को मरा हुआ सबका भस्म को विभूति के लगा के शरीर में लगा लेता, ये इसको बात तुम विश्वास करता, कोई विश्वास नहीं करता संसार में। भगवान ने इतने मीठे मीठे कहे कि इसको मोहित कर दिए, कहे कि देख तू अपनी इतनी क्यों भाग रहा है, तू खुद ही देख अपने शरीर में कुछ होने वाला नहीं है। राक्षसों को ऐसे ही मोहित भगवान कहते, तो वो ही मोहित हो गया है, बुद्धि कम होता है राक्षसों के पास है, कि बुद्धि तो सारे भगवान से आता ना, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान ही इनके सारे ज्ञान को विस्मरण करा देते हैं, तो इसलिए वो सिर में हाथ, खुद के सिर में हाथ रखा तो पूरा भस्म हो गया। राक्षस बुद्धि ऐसा ही होता है। हिरण्यकशिपु ने भी ब्रह्मा जी को ऐसा स्तुति करने लगा, आप ही भगवान हो, आप ही संसार के सृष्टि के कारण हो, आप ही पालन करते हो, आप ही संसार सभी करके भगवान, ब्रह्मा जी तो क्या करें, खड़े हैं जानते हैं मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन ये व्यक्ति मुझे भगवान भगवान कह के स्तुति कर रहा है, लेकिन कहे कि क्या करूं, ठीक है तो ज्यादा स्तुति मत कर, हिरण्यकशिपु क्या चाहते है, वरदान मांग लो, तो कहे कि ठीक है आप वरदान दोगे मुझे, तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, क्या वरदान मांगा, यदि हे ब्रह्मा जी मुझे वरदान, भागवत में वर्णन किया जाता कि हिरण्यकशिपु ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो, यदि दास्यस्य भीमतान वरान मे वरदोत्तम भूतेषु स्तदिसृष्टेभ्यो मृत्युर्माम भुम्नम प्रभु, हे प्रभु हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वर देना चाहते हो, तो यह वर दे कि आपने द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव द्वारा मेरा मृत्यु प्राप्त न हो, मुझे यह वर दे कि मैं न तो घर के अंदर न घर के बाहर न दिन के समय न रात में न भूमि पर न आकाश में मरूं, मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों की द्वारा भी कि जीवों के भी अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा भी न हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। आप मुझे ये वरदान दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोक के किसी बड़े सर्प द्वारा भी ना मारा जाऊं, क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न रहो। मुझे सारा जीव तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त जस दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाला समस्त योग सिद्धि योग शक्तियां दें, क्योंकि ये कभी भी जैसे विनष्ट भी न हो, इसकी भी आशीर्वाद, इसकी भी वरदान दीजिए। पद्म पुराण में कहा गया कि हिरण्यकशिपु ने केवल इतने और भी वरदान मांगा था कि 12 महीनों में मेरा जैसे मृत्यु न हो, किसी भी महीना में मृत्यु नहीं होगा। 6 ऋतु आता है साल में, 2 महीने में 1 ऋतु आता, वो ये भी वरदान मांगा था भी 6 ऋतु और 12 महीने भी मेरे मृत्यु जैसे नहीं होगा। तो फिर अभी मरा, ये तो अभी आया, कौन सा तिथि है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि है। तो फिर वो तो वरदान मांगा था कि 12 महीने भी इसका मृत्यु नहीं होगा, तो फिर ये तो वैशाख महीना के महीना में चतुर्दशी आ रहा है ना, इसमें कैसे इसका मृत्यु हुआ? आज हम सोच रहे हैं कि आज के दिन ही, ना दिन ना रात, कहता कि दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा, इसके लिए संध्या के समय में सूर्य अस्त हो गए, लेकिन अभी रात्रि घोर अंधकार नहीं आया, उसी संध्या के समय में भगवान ने प्रकट हुए थे। किसमें से प्रकट हुए थे? खंभे से। और उसको, लेकिन महीना तो है ना वैशाख महीना, कैसे मार रहे थे फिर? ये वरदान था कि 12 महीने भी नहीं मरेगा, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरेगा, तो भी तो आपको अमर सोच रहा था, लेकिन वो भूल गया था कि हर 3 साल में और 1 महीना आता है। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम मास भी आता है, जिसको अधिक मास कहते हैं, मर मास कहते हैं। इसलिए पद्म प्राण के आधार पर भगवान ने उसी महीने में प्रकट होकर उसको फाड़े डाले थे। किसको? हिरण्यकशिप को बद्ध किए थे, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में प्रकट होकर इसको बद्ध किए थे, क्योंकि वरदान भी दिया था कि 12 महीने में किसी महीने में। लेकिन फिर आज हमें इसी उत्सव क्यों मना रहे हैं? किसके उत्तर में पद्म प्राण कहते कि ये जो हिरण्य, ये जो नृसिंह चतुर्दशी व्रत, ये नहीं कि उसी से हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद इसके प्रारंभ हुई, नहीं, ये व्रत तो अनादिकाल से चल रहा था। इस व्रत को तो प्रह्लाद ने भी इनके पूर्व जन्म में पालन किया था, क्योंकि हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद जो भगवान ने प्रह्लाद को अपने गोद में लेकर बैठे थे, प्रह्लाद ने पूछा, हे प्रभु, हे महान भगवान, मैं हिरण्यकशिप की पुत्र होते हुए राक्षस कुल में जन्म होकर भी आपकी ऐसे महान भक्ति कैसे किया, कैसे भक्त बना, इसकी क्या रहस्य है? इसको हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी भी लिखते हैं, कहानी इसकी चरित्र लिखते हैं। तो कहते कि हे प्रह्लाद, स्वयं नृसिंहदेव ने कहते कि तेरे पूर्व जन्म के इतिहास में कह रहा हूं। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण का पुत्र था, एक वसुशर्मा नाम के एक ब्राह्मण था, और उसके पत्नी के नाम था सुशीला, और उस ब्राह्मण के 5 पुत्र थे और तुम उसका सबसे छोटा पुत्र था। तुम्हारे नाम था वासुदेव तुम्हारा नाम था, लेकिन और दूसरे तुम्हारे बड़े भाई लोग तो सभी वैदिक रीति से सुसंस्कृत थे, सभी प्रकार के वैदिक निर्देशन के आधार पर यज्ञ आदि कर्म करके ही ब्राह्मण उचित गुण में गुणी थे, सद्गुण संपन्न थे, लेकिन तुम ऐसा ही था कि तुम वैश्यासन्य था, शराब पीता था, सभी प्रकार का उग्र कर्म में लगा हुआ था। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने एक बार देखा तुम कैसे मार्ग पर वैश्या के साथ हाथ पकड़कर चलते हुए, तुम घर से निकाल दिया। तभी तूने वेश्या के पास गया, वेश्या वालों को भी देखे कि पैसा पैसा पर धन नहीं है, इसलिए तो वो लोग तुमको आदर नहीं किया, लेकिन वेश्या के साथ में तुम्हारा झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के कारण तुम फिर दुखी होकर जंगल में चला गया, क्योंकि तुम दूसरे जो संबंधित है कोई भी तुमको आश्रय देना नहीं चाहा, तुम्हारे ऐसे कुचरित्र के कारण। जंगल में तुम भटकते भटकते शाम के समय दिन भर तुम्हारा ऐसे ही फास्टिंग रह गया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, निर्जल व्रत रह गया। लेकिन ये उसी दिन था, ये नृसिंह चतुर्दशी मेरे व्रत का दिन था, और तुम अज्ञात से ऐसे व्रत पालन कर लिया। शाम के समय में दुखी होकर एक झरना के पास आया और झरना में थोड़ा स्नान कर लिया, स्नान करके करने के बाद थोड़ा फ्रेश हो गया, तो वहां किनारे पर पीपल का वृक्ष था, वहां पर बैठ के जब दुख आता था सब लोग थोड़ा स्मरण करता, किसका है? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरण जदि करे दुख कहा के। भगवान नृसिंहदेव ने कहे कि देखो तुम वासुदेव के रूप में उसी समय तुम्हारा नाम था, तो शाम के समय फिर तुम आकर वही पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा हरि का नाम जप करने लगा है, हरि हरि है थोड़ा बोलने लगा है, नारायण नारायण थोड़ा जपने लगा। लेकिन ऐसे ही होते होते तुमको तो दिन भर ऐसे भ्रमण करते करते क्लांत हो गया था, लेकिन सोने के लिए प्रयास करा तो मच्छर चारों साइड में काटने लगे हैं, जंगल में बीच में से मच्छर काटे कई, तुमको नींद नहीं हुआ, रात्रि जागरण भी हो गया है, दिन भर पूरा निर्जल फास्टिंग हो गया, रात्रि भी जागरण हो गया, इसलिए अज्ञान से तुझे मेरे ये नृसिंह चतुर्दशी का व्रत पालन हो गया है, और इसी व्रत की प्रभाव से तेरी जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ, सॉरी इसी व्रत के प्रभाव से तुझे नारद जी जैसे महान महाभागवत वैष्णव के संग प्राप्त हुआ। क्योंकि शास्त्र कहता कि हम भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, भक्ति कैसे भक्ति भक्ति में प्रवेश करते हैं, न भक्ति भक्त संगेन उपजायते, भक्ति केवल भक्तों की संगति से प्राप्त होता है, इसका कोई दूसरे कारण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते कि सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम पूजा तिन्ह मुख्य अंग है। साधु संग ही भक्ति का मूल है, उसी से ही पाप शुरुआत होती है भक्ति। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज को नृसिंह देव ने स्वयं कहते देखो तुम पूर्व जन्म की जो स्वीकृति प्राप्त किया था साधु संघ से तो भक्ति होता है, क्योंकि भक्ति भक्त संघे न उपजायते, लेकिन भक्त के संघ कैसे प्राप्त होता, भक्त के संघ स्वीकृति के बल पर प्राप्त होता है। कैसे स्वीकृति, ना भक्ति मुखी स्वीकृति है, भक्ति भक्त संगे न उपजा, भक्ति भक्त संगे न उपजायते, लेकिन सत्संग प्राप्यते पुंग भी सुकृत ही पूर्व संचित ही। नारद जी जैसे वैष्णव के सत्संग पूर्व जन्म की सुकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो ऐसा सुकृति कौन सा है, न कर्मन्मुखी सुकृति, ज्ञानन्मुखी सुकृति और भक्तिन्मुखी सुकृति। कर्मकांड के माध्यम से व ज्ञानकांड के माध्यम से साधु संग नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, माधव की तिथि जैसे एकादशी व्रत नृसिंह चतुर्दशी व्रत बा जन्माष्टमी रामनवमी आदि व्रत जो पालन करते हैं उसी व्रत की पुण्य के माध्यम पुण्य फल से ही साधु संघ प्राप्त होते हैं। साधु संघ बड़ा दुर्लभ है, इतने आसान से साधु संघ नहीं प्राप्त होते। नृसिंह देव कहे कि क्योंकि तुम अज्ञान से मेरे नृसिंह चतुर्दशी का व्रत पालन कर लिया था पूर्व जन्म में, इसीलिए तुझे नारद जैसे महाभागवत वैष्णव के संग प्राप्त हुआ। मां की गर्भ में था तभी भी नारद जी के संग से तुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए तुम इसी जन्म में मेरी भक्ति किया। इसलिए पद्म पुराण में कहा जाता कि नृसिंह चतुर्दशी की व्रत पहले से भी अनादिकाल से चले आ रहा था, सृष्टि के प्रारंभ से। कैसे व्रत के प्रारंभ हुआ, पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णन आता कि सिंधु प्रदेश में आज वो सिंधु नदी के किनारे मुल्तान प्रदेश जो कि आज पाकिस्तान के अंदर में है, है? मुल्तान प्रदेश में सिंधु नदी के किनारे एक ऋषि रहते थे, उनके नाम था हरित मुनि, उनकी पत्नी थी, पत्नी के नाम थी लीलावती। हरित मुनि और लीलावती दोनों हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या उठाए, केवल सूखे पत्ते और घास, सूखे घास खाकर सिंधु नदी के जल पीकर कठोर तपस्या करने लगे। तो उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हुए, नृसिंहदेव प्रकट हुए। तो इन्होंने वरदान देने जाए, जब भगवान ने कहे कि क्या तुम्हारे तपस्या में प्रसन्न हो गया हूं, जो चाहिए वर मुझे मांगो, लेकिन इनके मन में कोई भौतिक इच्छा था नहीं, इन्होंने तो भगवान के समान एक पुत्र प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने कहे कि हे प्रभु, हे वरदाता, यदि आप हमें कुछ वर देना चाहते तो आपके समान एक पुत्र हमको चाहिए, आपके समान गुणवान रूपवान पुत्र चाहिए। तो भगवान कहे कि देखो, मैं तो असमर्थ हूं, मेरे समान कोई नहीं होता है, मेरे ऊर्ध्व में कोई नहीं होता है, आप मेरे समान पुत्र प्राप्त कैसे कर पाओगे, लेकिन फिर मुझे ही आपके पुत्र बनना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने कहे कि ठीक है, लेकिन देखो, लेकिन मैं अभी तुम्हारे गर्भ में, माँ के गर्भ में प्रवेश करने का चाहता नहीं, और ये लोग भी इतने प्रतीक्षा करने के लिए उनके पेश आते, तुरंत ही भगवान उनके पुत्र बन जाए। तो इसलिए भगवान ने कहे कि ठीक है, मैं अपने स्वइच्छा से तुम्हारे सामने अभी बाल नृसिंह रूप धारण कर लेता हूँ, बाल रूप धारण कर लेता हूँ, आप मुझे वात्सल्य में पुत्र के समान लालन पालन कर सकते हो। ऐसे कहकर भगवान ने तुरंत ही बाल रूप में परिवर्तन, एक छोटा बालक समान बन गए, बच्चे बन गए। और हरित मुनि की पत्नी कौन लीलावती ने इनको अपने गोद में ली, भगवान को लालन पालन करके वात्सल्य सुख को अनुभव किए। इसलिए कहते कि ये कारण है, इसी दिन ये नृसिंह चतुर्दशी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन ही बाल रूप में बाल नृसिंह प्रकट हुए थे, हरित मुनि और लीलावती के पुत्र के रूप में। और भगवान ने इन वरदान उस दिन दिया था कि हे माता पिता, जिस दिन आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त किए, इस बाल नृसिंह के रूप में आपके गोद में मैं आया हूं, कोई भी व्यक्ति कोई भी मनुष्य यदि इसी दिन ये व्रत को धारण करेगा, वो निश्चित रूप में समस्त बाधा विघ्न से मुक्त होकर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा। इसलिए नृसिंह चतुर्दशी की व्रत अनादि काल से चले आ रहा है, क्योंकि हिरण्यकशिपु को तो ये वरदान था कि वो 12 महीने भी नहीं मरेगा। इसलिए कहा जाता कि पद्म प्राण में कहा जाता कि प्रकृति में भगवान ने मौ मास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में प्रकट होकर इसको विदारण कर दिए थे। कोई कहते कि नहीं, वो पुरुषोत्तम मास भी वैशाख मास के साथ था, वैशाख महीना और पुरुषोत्तम मास साथ में था, इसलिए चतुर्दशी को पूरे वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को ही आविर्भाव माना जाता है। जैसे अभी भगवान जगन्नाथ जी के नवकलेवर होने वाला इस साल है, भगवान जगन्नाथ जी के नवकलेवर कब होता है, जिस साल आषाढ़ महीने के साथ पुरुषोत्तम मास आता है, वैशाख ज्येष्ठ पर आषाढ़ महीना, आषाढ़ महीने के साथ जब पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है, तो दोनों मास साथ में होने से उसी साल भगवान जगन्नाथ जी की नवकलेवर महोत्सव मनाया जाता है, उनके शरीर को चेंज नया शरीर में ब्रह्म को प्रस्थापित किया जाता है। तो इसलिए पहला जो जगन्नाथ जी के नवकलेवर हुआ था 1996 में, 19 साल के बाद फिर इस साल होने वाला है। तो इसी प्रकार नृसिंह चतुर्दशी का व्रत ये अनादि काल से चले आ रहा है, और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके कि किसी भी उपाय से उसकी मृत्यु नहीं होगा, ऐसे ही वरदान, क्योंकि पहले तो वरदान चाहता था, ब्रह्मा जी कहे कि वर मांगो, तो भी पहले कहता था कि मुझे अमर वर दे दो, जैसे मरूंगा नहीं, हैं कभी भी मेरी मृत्यु नहीं होगा, मेरे को जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रस्त नहीं कर पाएगा, वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहे कि देखो, मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं, तुमको कहां से अमर वर दूंगा, मेरे स्वयं का भी मृत्यु होता है। ब्रह्मा जी कहते कि मेरे उम्र का भी जो मेरे हिसाब से 100 साल पूरी हो जाता, मेरे को भी, मेरा भी अंत हो जाता है, मेरे शरीर का मुझे फिर भगवान विष्णु के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। और तुझे मैं अमर वरदान कैसे दे सकता, मैं तो स्वयं अमर नहीं तो तुमको कैसे अमर बना सकता हूँ। लेकिन हिरण्य कश्यप को सोचा कि ये मेरे से छल करता है, मुझे अमर बनाना नहीं चाहता, इसलिए वो भी कपट करके इसे मांग लिया था। बोल रहे दिन में मृत्यु नहीं होगा, रात में मृत्यु नहीं होगा, जल स्थल आकाश में मृत्यु नहीं होगा, अंदर में नहीं बाहर में नहीं, किसी भी ब्रह्मा जी आपके सृष्टि में 84 लाख ज्वनि में जितनी भी जीव सृष्टि हुए किसी के हाथ में मेरी मृत्यु नहीं होगा। देव नर राक्षस किन्नर गंधर्व कोई भी मुझे बध नहीं कर पाएंगे, किसी महान सर्प के द्वारा भी मैं ग्रसित नहीं होगा, कोई सांप भी मुझे या कोई गरुड़ आपके जैसे भगवान विष्णु की वाहन किसी की द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होगा। बहुत कुछ ऐसे मांगते मांगते अब ब्रह्मा जी ने जो तथास्तु कर दिए थे, अंत में तो सोचा था कि मैं अमर बन गया, लेकिन भगवान विष्णु के विष्णु इससे भी अधिक बुद्धिमान है। ये जगत में संसार में जितने भी बुद्धिमान होते हैं सभी का बुद्धि कहाँ से आता है, भगवान से ही आता है। समस्त ज्ञान की समस्त बुद्धि की वही एकमात्र स्रोत है। श्री भगवान ने गीता में कहे 15वें अध्याय 15वें श्लोक में वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्य, सारे लोग क्यों वेद की अध्ययन करते हैं, मुझे ही समझने के लिए, और सारे वेद का रचयिता मैं ही हूं। वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृत, मैं ही वेद के रचयिता हूं, वेद विदेव चाहम, वेद की जो रहस्य को मैं ही जानता हूं, प्रत्येक जीव के हृदय में मैं ही निवास करता हूं, मेरे से ही स्मृति विस्मृति ज्ञान सब कुछ आता है। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे मूर्ख सोचते कि हम स्वतंत्र है, इस संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इसलिए कहते कि नीचे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। मायाबद्ध जीव बहुत कुछ प्लान बनाता है, हिरण्यकशिपु की तरफ है, कितनी कितनी प्लान बनाकर योजना करता है, लेकिन हे प्रभु ये मूर्खों को पता नहीं कि जब तक आप इसके सैंक्शन नहीं करोगे वो कार्यकारी नहीं हो सकता है। हिरण्यकशिपु इसी प्रकार आपने योजना बनाकर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके सोचा कि मैं अभी क्या बन गया, अमर बन गया, तीनों लोक में मुझे कोई भी बद्ध नहीं कर सकता, ऐसे ही भावना लेकर बड़ा उद्दंड उद्दम क्या तीनों लोक में लोगों को सताने लगा। पहले स्वर्ग के दिग्विजय करने के लिए स्वर्ग में गया, देवता लोगों ने भाग गए, सब सब छुप गए, कहीं दिखाई नहीं पड़े। तीनों लोक में घूमते चारों से सब जगह घूम के आकर फिर बढ़ गया, बड़ा अभी मैं भगवान बन गया, डिक्लेयर कर दिया भगवान कोई नहीं है, भगवान कौन है। सभी लोग जो देवता लोग ने बात में भयभीत होकर जब आए फिर कहे कि सभी लोग जो मुझे स्वीकार नहीं करके भगवान की रूप में मैं इसकी इसको नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा। इसलिए सभी लोग बात में देवता लोग ने भी सब कहना पड़ता था, देवता लोग ने कभी कभी आते थे हिरण्यकशिपु के पास में, क्या कहना पड़ता था इनको, भगवान हिरण्यकशिपु की ये आप विजय कर रहे हो, आप लोग विजय कर रहे हो, हिरण्यकशिपु भगवान नहीं है, आप लोग विजय कर रहे हो। अरे देवता लोग को भय में करना पड़ता था, आप हिरण्यकशिपु को डरो मत, नृसिंहदेव है ना आपके साथ। ये देवता लोग भी सब रखते, जो भी आते थे हिरण्यकशिपु दरबार में सभी को कह के आना पड़ता था, भगवान हिरण्यकशिपु की जय कहकर आना पड़ता था। इतनी प्रतापी था हिरण्यकशिपु, जब क्रोधित होकर किसी देवता ऐसे आकाश को देखता था देवता लोग दलगण कंपते थे, वो कहता था कि ए इंद्र मेरे साम्राज्य में जितनी बारिश में जब जो चाहेंगे इतनी बारिश देना, ज्यादा बारिश नहीं करना है। इंद्र को हिरण्यकशिपु की इच्छा से चलना पड़ता था, जितने हिरण्यकशिपु कहता था कि ठीक है जब बारिश में बोलूंगा करने के लिए तो बारिश करना। सूर्य को कहता था कि ये समर सीजन नहीं है, समर सीजन तुम नीचे नहीं है ना, गर्म नहीं होना, मेरे राज्य में किसी भी जनता को गर्म नहीं होगा, हिरण्यकशिपु यहाँ पर तो सूर्य को भी ऐसे डर से रहना पड़ता था ऊपर में, हिरण्यकशिपु इतना प्रतापी था है। सूर्यदेव को भी कहता था कि ऐसे बोला तुम किचन का इंचार्ज बनो है, तुम कुकिंग करो, ठीक से जलेगा नहीं खाना, जब जल जाएगा तो तुमको शास्ति मिलेगा, किसको है? वो कहता था कि मेरा वस्त्र को आयरन कर, सफाई करके आयरन करके मेरे को देना। ये देवता लोग में सब इसका नौकर की तरफ सेवा करते थे, किसका? हिरण्यकशिपु की। इतनी प्रतापी बन गया था, सभी लोग इसको स्वीकार करते थे कि ये सर्वशक्तिमान भगवान भगवान है, लेकिन उसी का लाला कौन प्रहलाद, उसी का बेटा प्रहलाद नहीं स्वीकार करता था। 5 साल के बेटा छोटा बालक वो कभी नहीं कहता था कि आप भगवान है। पहले तो प्रहलाद जब उम्र में मैंने उसके 4 पुत्र थे हिरण्यकशिपु और कयाध, मैंने प्रहलाद भी कैसे जन्म हुआ, प्रहलाद के जब तपस्या में चला गया था मंदराचल में भगवान बनने के लिए तपस्या करने के लिए गया, तभी कयाध हुए अकेले बिचारी अपने राजभवन में रहती थी। देवता लोग ने सोचे कि अभी सुजग मिला है, अभी ये जो हिरण्यकशिपु अपने औरस से जो गर्भवती है कयाध उसका पत्नी, उसकी गर्भ में एक संतान है, लगता है कि बाप से भी बढ़कर कौन होता है, बेटा। एक हिरण्यकशिपु इतने सताया, पता नहीं उसकी बेटा जो उसकी फिर जन्म होगा तो फिर वो तो हिरण्यकशिपु से भी और बड़ा बनेगा, अभी इसका समाप्त कर देते इसको है। राक्षस की मति भी सॉरी देवताओं की मति भी कभी कभी राक्षस जैसे हो जाता है, तो उसको बध कर राक्षसों को आक्रमण किया, राक्षस लोग ने समकक्ष नहीं कर पाया देवताओं की, क्योंकि हिरण्यकशिपु भी बड़ से ये बलियान थे, राक्षसों को परास्त करके देवता लोग ने पूरे राक्षसों के साम्राज्य को कवर करके ही बलात्कार से हिरण्यकशिपु की पत्नी को इसके केस पकड़कर घिसट कर ले जा रहे थे। नारद जी ने पधारे, कहे कि ये क्या कर रहे हो, तुम लोग देवता हो, ये राक्षसों की तरफ ऐसे ही किसी बन गए आप, एक सती स्त्री है वो, चाहे उसका पति राक्षस है लेकिन फिर भी स्त्री को ऐसा ही व्यवहार नहीं किया जाता, तुम देवता होकर सर्वशास्त्र ज्ञानता होकर ये क्या कर रहे हो, ये सती स्त्री के क्रोध से अभिशाप से तुम ध्वंस हो जाओगे, छोड़ दो इसको। इंद्र ने कहा कि देखो नारद जी, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, आपको पता है ये कौन है, ये मिसेस हिरण्यकशिपु है। कौन? मिसेस हिरण्यकशिपु, ये हिरण्यकशिपु का पत्नी है, पटवानी है, और हिरण्यकशिपु तो हमको जितना सताया और इसकी पत्नी के गर्भ में एक संतान है, हमें लगता है कि ये भी बाप से बढ़कर बनेगा ये, इसलिए हमको इसका साथ कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इसको लेकर हम अरेस्ट करके रखेंगे, स्वर्ग में ही रखेंगे, जेल में, अच्छा मैंने ऐसे मैंने फर्स्ट क्लास जेलर बना के रखेंगे, सताएंगे नहीं, अच्छा खाना पीना इसके सुविधा, लेकिन ये बच्चा जब जन्म होगा उसके गर्भ से इसका वध कर डालेंगे, ये बच्चे को मर्डर करना हमारा इच्छा है। तो नारद जी ने कहे कि अरे मूर्ख देवतागण, ये जो पुत्र आप सोच रहे हो कि राक्षस उसके गर्भ में, ये देव ये राक्षस नहीं है, ये महाभागवत वैष्णव है। कि नारद जी ने स्वयं कृपा करके जानते थे कि ये कैसे ये पुत्र का जन्म हुआ प्रहलाद का है, नारद जी कृपा से ही हिरण्यकशिपु नारायण 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 है, वो रात पूरे जपते हुए कयाधु के साथ संगम किया था। तो इसलिए नारद जी ने कहा कि ये इसके गर्भ में महाभागवत वैष्णव है, सारा दुनिया सब आप समस्त देवताओं की समस्त अस्त्र प्रयोग करके भी इसको कुछ इसकी नाश नहीं कर सकते हो, ये सदा भगवान की द्वारा सुरक्षित रहेगा, इसको मेरे जमींदारी में छोड़ दो कयाधु को, ये बालक को आप बध नहीं कर पाओगे, ये महाभागवत वैष्णव है। लेकिन देवताओं को जब पता चला कि कयाधु को गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, एक महाभागवत वैष्णव है, तो तुरंत ही नारद जी कहने पर छोड़ दिए इसको, और फिर जो अपराध किए थे प्रणाम करके ही फिर वो वैष्णव उसके गर्भ में है सोचकर कयाधु को परिक्रमा की, इसको छोड़कर परिक्रमा करके प्रणाम करके अपराध क्षमा मांग के चले गए। कौन? देवता लोग ने, देवताओं की यही वृत्ति है, वो वैष्णव को स्वीकार करते, नारद जैसे महाभागवत के वचन को स्वीकार कर लेते हैं है? तो नारद जी के लेकर उनको कयाधु को लेकर अपने आश्रम में रखे। अरे नारद मुनि का तो कोई कहते का आश्रम है कहाँ है नारद मुनि का, इनको दक्षिण में अभिशाप दिया था ना, क्या अभिशाप दिया था नारद मुनि को, इनका कहीं घर नहीं होगा नारद मुनि का है, दक्षिण ने अभिशाप दिया था कि नारद मुनि सबको भक्त बनाते थे, उसका सारा मैंने जो दक्ष के सब 2 सेठ के पुत्रों को जन्म दिया, पहले 10,000 फिर 16,000 1,000 पुत्र में जन्म दिया। नारद जी ने उनके पास पहुंचकर सबको 2 सेकंड प्रीचिंग करके सब भक्त बना दिए, सबको ब्रह्मचारी बना दिया, अनुष्ठिक ब्रह्मचारी बनाकर सब भक्ति भक्त भक्त बना के इनको भगवत धाम भेज दिए। तो इसलिए दक्ष ने बड़ा क्रोधित हुआ है, तुमने बार बार मेरे सब संतान को भक्त बना देता है। प्रभुपाद जी ने भी कहा करते थे कि मैं भी ऐसे विश्व में भ्रमण करके जो यंग लड़कों को सब भक्त बनाया, उनकी माता पिता भी मुझे अभिशाप दिए होंगे, इसलिए मैं भी सारा दुनिया में क्या करते रहता हूँ, भ्रमण करते रहता हूँ, प्रचार करते रहता हूँ। नारद मुनि को भी दक्ष जो अभिशाप दिया कि तुम्हारा कोई घरवार नहीं रहेगा, तुम ऐसे ही सदा भटकते रहोगे। नारद कहे कि बड़ा बहुत अच्छी आशीर्वाद हुआ है कि प्रचार और ज्यादा बढ़ जाएगा, सदा भ्रमण करूंगा, प्रचार करूंगा। तो इसलिए कहते कि नारद मुनि तो दक्ष जी का अभिशाप था, उनका तो कोई आश्रम घर नहीं होता, तो कयाधु कैसे लेकर रखे थे। भारत कहते वो कयाधु को लेकर, प्रहलाद की माता को लेकर नारद मुनि अपने आश्रम में रखे हैं। कोई कहते कि ये घटना नारद मुनि का जो ये जो मैंने जो कयाधु को लेकर आश्रम में रखे थे तभी दक्ष का अभिशाप नहीं हुआ था, दक्ष का अभिशाप बाद में हुआ है। पर कोई कहते कि नहीं, नारद जी के आश्रम भी ब्रज में है, जब आप गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करोगे कुसुम सरोवर के थोड़े आगे जाओगे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है नारद कुंड है, नारद मुनि के आश्रम। पर ब्रज के अंदर नारद मुनि का अभिशाप नहीं लगता है, भगवान के धाम में अभिशाप नहीं कार्य करता। इसलिए नारद मुनि जो घूम घूम के थक जाते तो फिर वहां आ जाते, ब्रज में आकर अपने नारद आश्रम मुनि आश्रम में वहीं पर लेकर कयाधु को रखे थे। जो ये कयाधु जब उनके आश्रम में रहे तो कयाधु ने नारद मुनि की सेवा की, जैसे माता सीता जी ने भी किसके आश्रम में रहे थे, वाल्मीकि के आश्रम में रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि साधारण व्यक्ति इसको इमिटेशन नहीं कर सकता, इसका अनुकरण नहीं कर सकता, महाभागवत वैष्णव थे। कयाधु जो नारद मुनि की सेवा करते रहते थे, कयाधु को मती तो उसका पति में था, हिरण्यकशिपु को वो वापस आएगा वो सोचती रहती थी, क्योंकि नारद जी की सेवा करती थी बाह्य रूप, लेकिन अंतकरण में सदा चिंतन करती थी किसका, हिरण्यकशिपु, क्योंकि सोचती थी वो अपने पुत्र को जन्म देना नहीं चाहती थी, उसको भय थी कि ये पुत्र यदि जन्म दे दूंगा फिर राक्षस लोग आ जाएंगे, नहीं सॉरी देवता लोग आ जाएंगे फिर इसको मर्डर करने, सोचती जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं है कि मैं इसको जन्म नहीं दूंगे। तो इस्लाम सोचते कि सुखदेव गोस्वामी सबसे ज्यादा समय माँ के गर्भ में थे, कितने साल, 16 साल, 14 साल, कोई 12 साल ऐसे कहते। लेकिन प्रहलाद जी कितने साल गर्भ में रहे, हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया था और तपस्या में वापस आया, हाँ कितने दीर्घ समय रहे माँ के गर्भ में, लेकिन नारद जी के आशीर्वाद से वो गर्भ में धारण करके रखी प्रहलाद को। प्रहलाद उसके गर्भ में, कयाधु के गर्भ में रहे और महाभागवत मैंने नारद मुनि की विशेष इच्छा था कि कयाधु के गर्भ में जो संतान है ये महान वैष्णव बने, इसलिए उन्होंने उसको उपदेश दे रहे थे। कौन सारे भागवत के रहस्य को उन्होंने डेली भागवत की कथा सुनाते थे, कयाधु को सुनाते थे, बाह्य रूप से कयाधु सुनते थे, लेकिन गर्भ में वो बच्चे भी बैठकर सुन रहा था, कौन, प्रहलाद। लेकिन नारद जी ने चाहते थे कि ये प्रहलाद मेरे शिक्षा को धारण कर सके, मैं जो उपदेश दे रहा हूं ये बच्चे जैसे सबको स्मरण कर सके। संत के आशीर्वाद के बिना हम जितने प्रयास करने भी ज्ञान हमारे हृदयंगम नहीं हो पाते हैं, इसलिए साधुओं की सेवा करके ही उनके आशीर्वाद के बल पर हम फिर उस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार सकति आछे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तब पाछे पाछे। इसलिए कयाधु के कयाधु तो बाहर सेवा करते थे, नारद मुनि इनको प्रत्येक दिन भागवत के रहस्य को भागवत कथा कहते थे और गर्भ में रहकर प्रहलाद उसको सुनते थे। इसी प्रकार वो नारद मुनि की शिक्षा को प्राप्त करे माया के गर्भ में रहकर सीख गए। और उसके बाद उन्होंने हिरण्यकशिपु आने के बाद कयाधु फिर अपने घर में पति जो हिरण्यकशिपु ने आकर इनको फिर नारद जी से लेकर इनको समर्पण कर दी, हिरण्यकशिपु को तुम्हारी पत्नी है। और जो उसको पता चला कि देवता लोग ने ऐसा ही सताए थे मेरा पत्नी को, अब उसका क्रोध तो और बढ़ गया है, भागा सीधे जब देवताओं को आक्रमण करने, लेकिन देवताओं को भाग के छुप के दूर दूर से माफी मांगे। मैंने नारद जी ने कहा कि अरे क्षमा कर दो, तो इनको छोड़ दो, इनको क्या देवता लूंगा, इतने सभी तुम्हारे नौकर बन जाएंगे, अभी चिंता मत करो। लेकिन देखो नारद मुनि भी दोस्त बन गए, किसका फ्रेंड कशिपु का है। नारद मुनि ऐसी पर्सनैलिटी है, राक्षस लोग भी उनको अच्छा समझते हैं, कंस का भी दोस्त बन गए थे। चाहे भगवान किसके शत्रु हो जाते राक्षसों के, लेकिन नारद मुनि जैसे संत है वो सबके मित्र होते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण और कंस जैसे राक्षस भी उनको अपना मित्र समझते हैं, है? इसलिए वो दोनों की देवता लोग भी नारद को शत्रु समझते, अपने मित्र समझते थे, और मनुष्य भी और राक्षस भी सभी साधु के लिए, साधु के इसलिए कहते कोई शत्रु नहीं होता है, अजात शत्रु है। साधु की गुण कैसे होता है, भगवान कपिलदेव कहते कि तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहीनाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषणा। साधु के शरीर में ऐसे अलंकार रहते हैं, सहनशील होता है साधु, तुड़ादपि सुनिचेन तरोदपि सहिष्णुः तितिक्षव कारुणिका, बद्ध जीवन के प्रति करुणा की भावना रखता है, दया की भावना, इसलिए प्रचार करता है। सुहृद सर्वदेहीनाम, प्रत्येक प्राणी की सुहृद मित्र होता है। अजात शत्रु, साधु की कोई शत्रु नहीं रहते हैं, बाबा किसी को शत्रु नहीं मानता है, साधु किसको शत्रु नहीं मानता, शांत रहता है। साधु शास्त्र के आधार पर सारे कार्य साधु का होता है, साधु अपनी मनमानी से कोई कार्य नहीं करता है। तो इसी प्रकार नारद जी जैसे महान संत थे, वो भी चाहते थे कि प्रह्लाद भी उसी मार्ग पर चलते हुए महान संत बने, इसलिए प्रह्लाद जी का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु आने के बाद प्रह्लाद जब जन्म लिए तो फिर वो प्रह्लाद को शिक्षा गुरुकुल में भेजने के लिए हिरण्यकशिपु ने, राक्षसों की गुरु कौन होता है, शुक्राचार्य, और देवताओं की गुरु बृहस्पति। शुक्राचार्य कहीं तीर्थ भ्रमण में लगे हुए थे, तो उसने अपने दोनों शिष्य को उसके बोले कि गुरुकुल चलाते रहो मेरा अनुपस्थिति में। उनके दो शिष्य थे संध और अमरक। ये संध अमरक की अध्यक्षता से प्रह्लाद को भेज दिए, मैंने गुरुकुल में भेज दिया। हिरण्यकशिपु बोला इनको शिक्षा दो ठीक से, सुब है मेरा भविष्य में यही दायाद बनेगा, राक्षसों के राजा यही बनेगा, कौन प्रह्लाद, इसलिए इसको ठीक से दंडाप करो। राक्षस बने वो प्रह्लाद महाराज तो पहले से ही सब शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, किससे, नारद मुनि की कृपा से इनको सारे दिव्य ज्ञान प्राप्त था। स्कूल में जाते थे और जब बैठते थे तो संधामर्क के सामने, लेकिन जो संधामर्क जो पढ़ाते थे वो उसको सुनते मेरे अन्यमनस्क रहते थे, कभी कभी क्रोधित होकर आए प्रह्लाद पूछते थे, लेकिन जो जो भी प्रश्न पूछते थे प्रह्लाद सारे उत्तर दे देते थे, फिर शांत हो जाते थे। लेकिन प्रह्लाद ऐसे कई दिनों तक संध्यामर्क की गुरुकुल में रहकर अध्ययन किए। एक दिन अपने घर में आए थे और उनके माताजी ने इनको क्या की, स्नान आदि करके अच्छा से सिंगा मने वस्त्र, अच्छे नए वस्त्र पहनाकर, अलंकार गहने पहनाकर, राजपुत्र थे, तीन लोग की सम्राट हिरण्यकशिपु की पुत्र है, और इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार करने के बाद, और वो हिरण्यकशिपु के पास में गए, प्रह्लाद ने जाकर प्रणाम किए, हैं, और उन्हें प्रणाम करते हुए देखकर, अपने पुत्र को ही प्रणाम करते हुए देखकर हिरण्यकशिपु का हृदय बड़ा पिघल गया है। प्रह्लाद कैसे थे वो सुंदर भागवत ने वर्णन करते हैं, नारद मुनि स्वयं कहते प्रह्लाद के गुण कैसे था। ब्रह्मण्य शिर संपर्ण सत्य संध जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय श्रुतम दासव दासवत् संगतार्यन्द्रि पितृवत् दिनवत्सल भातृवत् सदृशो स्निग्धो गुरु ऋषिश्वर भावन गुरु सुईश्वर भावन विद्यार्थ रूप जन्माढ्य मानस्तम मानदंभ विवर्जिता। कैसे स्वभाव था प्रह्लाद के, स्वयं नारद मुनि कहते कि हे योग्य ब्राह्मण प्रह्लाद महाराज के योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया संस्कृत स्वच्छ सत्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे, उन्हें अपनी इंद्रिय तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हर एक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के भी वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु थे। भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानते थे व सम्मान करते थे। वे उस बनावटी गर्व व मान से पूरी तरह से मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म से कारण संभव था। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज के चरित्र में एक महाभागवत वैष्णव के सारे गुण प्रकट था। 26 गुण जैसे वैष्णव की कहा जाता है, ये समस्त गुण प्रहलाद के चरित्र में प्रकट हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। ऐसे प्रहलाद एक दिन जाकर हिरण्यकशिपु को प्रणाम किए। सुबह सुबह स्नान कर दिया माता जी ने, प्रणाम किए तो हिरण्यकशिपु ने भाव में विभोर होकर अपने पुत्र को लेकर गोद में बैठाया है, भोर में उठाकर गोद में बैठा है। बड़ा पुत्र प्रहलाद, तुम ही मेरे भविष्य के उत्तराधिकारी हो, तीनों लोक की मालिक तुम ही बनोगे, लेकिन तुमने गुरुकुल में क्या क्या शिक्षा प्राप्त किया है? थोड़ा बेटा मुझको बताओ क्या सीखे हो। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहने लगे, बोले कहेगी पिताजी, तत्साधु मन्ने असुर वर्ज्य देहिनं सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत्। के पिताजी, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक ग्रस्त जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए, और स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए। प्रभुपाद ने कहते कि स्पष्ट अर्थ क्या है इसका, और जो प्रहलाद महाराज कहते कि वनं गच्छन्तम हरिमाश्रयेत्, कौन सा वन में जाना चाहिए, वृंदावन, वृंदावन जाए जहां कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह भर भगवान के शरण ग्रहण करें। अर्थात इनडायरेक्टली प्रहलाद महाराज कहते कि आप अभी समय हो गया, किसको, हिरण्यकशिपु को, अभी वन में जाइए, वानप्रस्थ बहुत समय ग्रस्त जीवन में रहे, अभी आप वानप्रस्थ में जाकर भगवान की भक्ति कीजिए। हिरण्यकशिपु तो उस समय तो क्रोधित नहीं, हंसने लगा, बोले क्या रे छोटा सा बालक, ये क्या क्या बोल रहा, इसका मति को कौन ऐसे बिगाड़ा, यही नहीं समझा कि प्रहलाद का मन, वो क्रोधित होकर दोनों की तरफ देखने लगा, किन की तरफ, उसको जो पढ़ाने वाले दो टीचर थे संध्या अमर को, वो लोग कंप्लेन लगे भाई से, हिरण्य कश्यप क्रोध में बोला क्या क्या सिखाए हमारे पुत्र को, ये सिखा रहे हो। उन्होंने कहे कि महाराज हम नहीं सिखाए, हम सब नहीं सिखाए, वो कहां से सिखा हमको भी पता नहीं है, हमने इसको सिखाया नहीं ना, दूसरा कोई सिखाया, वो तो अपने आप अंदर से अपने आप ऐसे सीखता है, ये कैसा हो। हिरण्यकश्यप कहा कि कैसे अपने आप सीखे, कपने मेरे बेटा इतने नन्हा से बालक है, ऐसे कैसे सिखा, तुम लोग इसका मति भ्रष्ट कर दिया। संधमर कह की प्रभु आप राजा हो, राक्षस के राजा, ब्राह्मण को अपमानना नहीं करना, ऐसे अपमान बिना कारण से करने से आपकी भलाई नहीं होगा, आप समझिए हमने कुछ नहीं सिखाया इसको। तभी हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो सतर्क में रहो, लगता है क्योंकि बाहर से कोई साधु ऐसा ही तिलक कंठी को छुपा कर और ऐसे कोई अंदर में घुस के इसको इसका मति भ्रष्ट कर रहा है, बड़ा सतर्क में रहो, कोई कोई वैष्णव जैसे अंदर में आपका गुरुकुल के अंदर घुस के उनको मति बिगड़ ना दे, जैसे इस्कन वाला अभी करते क्या करते हैं, ये दुनिया का जितने भी स्कूल कॉलेज है सब किस किसका स्कूल कॉलेज है, ये संध्या मर के शुक्राचार्य जी की स्कूल है, जड़ा विद्या जो, इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहे कि जड़ विद्या जत मायार वैभव तुमार भजन बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मैया जीव को कराए गाढ़ा। ये जड़ विद्या जितने भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया जा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हो रहा, ये कैसे विद्या प्रदान करता है? जड़ विद्या माया रह वही हो, इसे माया का वही हो, इसमें कोई भगवान के बारे में शिक्षा नहीं दी जा रहा है। जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में विद्यालय में भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा तो केवल इंद्रिय सुख के बारे में बताया जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कैसे डिग्री लेना और धन कमाना वही भी सिखाया जा रहा, तो किसका स्कूल कॉलेज है वो? उसका टीचर कौन है? उसका प्रिंसिपल शुक्राचार्य है, और दो टीचर है कौन? संधार अमरक। क्योंकि यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट नहीं है सोल रिसर्च, भगवान के बारे में आत्मज्ञान देने की कोई शिक्षा नहीं देता है, इंद्रिय तत्व की शिक्षा सब दीजिए। पहले पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब डिपार्टमेंट है, है? कोई है डिपार्टमेंट जिसमें आत्मज्ञान की शिक्षा दी जा रही है? आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, शरीर आत्मा के अंतर क्या, कोई नहीं सिखाता। इसलिए शुक्राचार्य जी के स्कूल सारे हैं, यही शिक्षा दी जाती है। चलो, हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखो इसको बड़े केयरफुल रहो, जैसे इस्कॉन वाला भी आज क्या करते हैं, जहां पर बड़ा बड़ा इसको जो कॉलेज है उसका साइड में क्या खोल देते हैं, एक स्टूडेंट बेस खोल देते हैं, बेस खोल के वो कुछ कॉलेज लड़कों को छुपा के वहां बुलाते, इधर आओ अच्छा प्रसाद खिलाएंगे, संडे को आओ, और उनको आस्ते आस्ते बुलाकर वहां पर फिर सिखा देते क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रोपा जी कहा गए दुनिया सारा में, सारा दुनिया में ऐसे संध्या मरकर के स्कूल रखे, सुखी स्कूल कॉलेज को यूनिवर्सिटी खुला गया है, इसलिए एक एक प्रहलाद बनाकर वहां पर भजना पड़ेगा, है? और प्रहलाद फिर सबको भक्त बनाएगा। हिरण्यकश्यप जानता था कि इसलिए सतर्क रहो, है कोई तुम्हारे गुरुकुल के अंदर जैसे कोई साधु संत नहीं घुस जाए, मेरे मत की बिगाड़ रहे मेरे बालक को कोई आकर ऐसे सिखा रहा है। संधर्म कहे कि ठीक है हम इतना बड़ा मतलब बहुत अच्छे से नजर देंगे इसको, है प्रहलाद को। अब फिर ले गए बोले ठीक है हम इसको सिखाएंगे, तो दोबारा फिर लेकर लेकिन पढ़ा, लेकिन प्रहलाद का तो है, है? वहां पर कहते कि वो शिवन को स्वयं कहता कि जैसे जैसे कुत्ता के पूछ को कितने भी आप घुमाओगे ऐसे घुमा के सीधा करना चाहोगे सीधा होगा, घूम के फिर ऐसे ही हो जाता है। प्रहलाद को कितने भी प्रयास करने पर मति नहीं सुधारा, और वो तो और प्रचार करना शुरू कर दिया। अभी तो अकेले भक्ति करते थे, और वो जो संध्या मरकर जब रिसेस में चले जाते थे अपने घर में खाने के लिए, या बाहर कहीं चले जाते थे घर में छुट्टी कोई विशेष समर वेकेशन आदि होता था, आप प्रहलाद महाराज तो वहां बैठ कर अपना स्कूल खोल दिए, बस कह के देखो आए। क्योंकि प्रहलाद महाराज सबके साथ मिलजुल नहीं करते थे, वो अकेले बैठकर अपने भजन करते, जब टीचर नहीं रहते थे भजन करते थे, वो असुर राक्षस बालक लोग ने आकर हाथ पकड़ी खींचते थे, अरे प्रहलाद आए खेलेगा खेलेंगे आए हैं आ जाओ खेलेंगे नाचेंगे कूदेंगे हैं इधर आओ, टीचर लोग है अभी रिसेस है जाओ। तो प्रहलाद बोले कि अरे तुम जो सीखे ना उससे मैं भी तुम लोग को कैसे नाचेंगे गाएंगे, लेकिन कैसे नाचना मैं सिखाऊंगा आपको, है इधर आओ मैं सिखाता हूँ। और सम्राट के पुत्र थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, स्वभाव की भाव से बड़े सुंदर आकर्षक थे, सभी बालक आके इकट्ठी हो जाते थे उनके पास, बढ़ जाते थे चारों, बोले देखो ये जो सिखाए ना टीचर है, ये जो संगमर को सिखाए, मैं तुमको और को सिखा रहा हूं सुनो, है? तो फिर प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बैठा कर फिर पढ़ाने लगे, क्या कहे है? क्या सिखाए प्रहलाद महाराज? शिक्षा किसको याद है? दुर्लभंग मानुसंग जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थम अर्थधम, है कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवतान दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थधम। प्रहलाद महाराज ने कहे कि देखो ये राक्षसों की बालक मेरे मित्रों सुनो, ये जो दुर्लभ जन्म मिला है मनुष्य जन्म, ये बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार प्राप्त नहीं होता है, 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम, यद्यपि इस मनुष्य जन्म प्राप्त करने वाला व्यक्ति को भी शरीर त्यागना पड़ता है, अन्य अन्य जोनी में जो कि पशु पक्षी को भी शरीर त्यागना पड़ता है, मनुष्य को भी शरीर त्यागना पड़ता है, लेकिन इस मनुष्य जन्म का एक विशेष अर्थ है। क्या अर्थ है? कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत, है भागवत धर्म की शिक्षा आई है कि कौमार अवस्था से 5 साल उम्र से क्या स्टार्ट कर देना चाहिए भगवान की भक्ति कर शुरुआत कर देना चाहिए, भगवान हरि की श्रवण कीर्तन शुरुआत कर देना चाहिए हैं। भक्ति 5 साल उम्र में स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ से ही भक्ति शुरुआत किए थे, लेकिन वो हमको ये शिक्षा दे रहे थे कि बच्चों को कहते थे कि अभी अभी हो गया समय, अभी स्टार्ट करो क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। सुखं इंद्रिय कं दैत्या देह जोगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुख जत्मतः। कहीं क्या, अरे राक्षसों के पुत्र ये सुख दुख ऐसे ही अपने आप आते जाएगा, आते रहेगा और जाते रहेगा, पूर्व जन्म में जैसा जो प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध के आधार पर सुख न चाहने पर भी, जैसे दुख कोई नहीं चाहता दुख आता है, उसी प्रकार तुम सुख न चाहने पर भी सुख आपको प्राप्त होगा। ये सुख दुख के पीछे मत फंसो हैं। आपका जो असली कर्तव्य है क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए हैं। सुख न इंद्रिय कं दैत्या देह जोगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात, ये सुख दुख पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसके बारे में चिंतित मत हो। तुम्हारा जो असली कर्तव्य क्या, तत्प्रयास न कर्तव्य यथा आयु वय परम सर्वत्ने न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम भुजम। प्रहलाद महाराज शिक्षा देते रहे, ऐसा प्रयास मत करो, भौतिक प्रयास करके इंद्रिय तृप्ति की, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वृथा प्रयास मत करो। धन की कमाना, इंद्रिय तृप्ति कैसे होता है धन कमाने से, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। डिग्री लेकर नौकरी करना, बिजनेस करना और धन कमाना, मनी इज द स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनशाइन है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन कमाना और इंद्र तृप्ति में सारा जीवन को बिता देना, ये नहीं है। तत्प्रयास न कर्तव्य, ऐसा प्रयास मत करो। ये जीवन मिला भगवान की भक्ति करने के लिए, धन है लेकिन धन किसका है, लक्ष्मी तो नारायण के होता है, इसलिए तुम भी नारायण के दास बनो और तुम्हारे धन भी सारा किसको दे दो, भगवान को अर्पित करो। चाहे तू गृहस्थ आश्रम में रहता है, तुम्हारे घर को तू अपना मत सोचो, भगवान का ही घर समझो। ये धन जो कुछ कमाया भगवान को अर्पण करो हैं। इसी प्रकार घर को नी मंदिर बनाओ, तुम भी भगवान के दास बनो, तुम्हारे पत्नी भी भगवान के दास ही है, तुम्हारे संतान को भी भगवान के सेवक बनाओ, इनको भी भक्ति सिखाओ। ऐसी प्रकार धन के उपयोग करो हैं। और ऐसा प्रयास मत करो, तत्प्रयास इंद्रिय तृप्ति के प्रयास मत करो, तत्प्रयास न कर्तव्य। जो तो आयु बया परम, ये मनुष्य जीवन का जो परमायु ये बड़ा दुर्लभ है, है? है? इसको ऐसा ही अपव्यय मत करो। जो समय मिला तो मुकुंद की चरण की भक्ति करो, भगवान मुकुंद की चरणारविंद की भक्ति करो। आगे आगे प्रहलाद महाराज ऐसे बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान करते गए, क्योंकि देखो ये मनुष्य का जो 100 साल परमायु मिला है, ये 100 साल परमायु से जो इंद्रियों को संयम नहीं किया, तमोगुणी व्यक्ति 12 घंटे तो सोने में बिता देता है। तो 100 साल के परमायु से आधा जो 12 घंटा जो सोने में बीत जाता है, 24 घंटा से 12 घंटा सोता है, तो परमायु का आधा तो ऐसे सोने में चला गया। तो 100 साल परमायु टोटल यदि माना जाए, 50 साल तो किस में बीत गया, सोने में बीत गया, और जो 50 साल उसकी बच गया पास में, बचपन में खेल कूद में 10 साल तक तो ऐसे ही बिता दिया है, खेल कूद में उसमें उसको अज्ञान बाढ़ कैसे नाचा कूदा पास बस यही करके बचपन में ऐसे खेल कूद में बिता दिया है, कितने साल बीत गया, 10 साल में 60 साल बीत गया। इसकी बात कैशोर अवस्था में जब वो गया स्कूल में गया और पढ़ाई किया, फिर वो आस्ते आस्ते जौवन का प्रारंभ से, तो फिर वो उसके बड़े रोमांचित हैं उसके शरीर में आ जाता है, फिर वो परस्पर को देखते हैं, बालक बालिका देखते हैं, इनके कई प्रकार के हैं, खेल कूद करके ही ऐसा ही आनंद मौज मजलिस करके फिर बिता देता है। फिर 10 साल ऐसा ही बीत गया है, और अंतिम में जो ऐसा ही कितना बीत गया, 70 साल बीत गया। अंतिम में जो 80 साल के बाद जो 20 साल और रहा, 80 से 100 का वो बुढ़े हो गया, उसे दांत गिर जाएगा, गाल है चर्म से दुकट जाएगा, और इसकी तो कोई शक्ति नहीं रहता, सामर्थ्य नहीं रहता, उस समय तो कोई क्या बोलता तो उसको ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता, और उस समय क्या स्मरण शक्ति भी ह्रास हो जाता है, जैसे ही अंतिम में 20 साल तैसे बीत जाता। और कितने साल बच गया, 10 साल भी जो बीत जाता है वो भी गृहस्थ जीवन में रहकर बच्चों के साथ खेलना, कोई मैंने बच्चों की बड़ा तुतली सुंदर तुतली सुनकर है, सुनने में पत्नी के साथ में ऐसा ही है, अजित इंद्रिय जो कामी पुरुष ऐसा इंद्रिय तृप्ति में बिता देता है, संसार में ऐसे ही विषयी पुरुष जीवन का लक्ष्य को बर्बाद कर, ये मनुष्य शरीर को ऐसे ही बर्बाद करते तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है। लेकिन मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करना। ऐसे ही बच्चे बैठा कर बच्चों को सारा भक्त बना दिए, उनको पिचिंग करके सारे स्कूल का जितने भी पढ़ाई करते थे बालक सब भक्त बन गए। एक बार संध्यामर का आगे देख रहे थे कि जब गए थे रिसेस में अपने घर में, जो वापस आ रहे थे देख रहे थे कि सारे बालक प्रह्लाद के साथ क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी कीर्तन करने लगे हैं। संधमर को पास के देख रहे हैं क्या चल रहा है, ये राक्षसों के स्कूल में हिरण्यकशिप के गुरु माने द्वारा ये संचालित परिचालित गुरुकुल में आम टीचर है और इसमें सभी लोग हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। सारे स्थिति को समझ गई, ये सभी कौन किसका काम है, प्रहलाद ने सारी को भक्त बना दिया। उनका सिर तो प्रचक्कर है, बोला अभी हिरण्यकशिप पता लगेगा हम दोनों को चढ़ा देगा सूली में। वहीं से भागे दौड़ते दौड़ते हिरण्यकशिप पास में, बोले कि देखो महाराज बहुत सर्वनाश हो गया सर्वनाश हो गया। बोले हिरण्यकशिप, बोला क्या हुआ क्या हुआ, बोलो सर धैर्य से बोलो। बोले आपका पुत्र प्रहलाद ने सारा गुरुकुल को हमारा बर्बाद कर दिया, सारे को सारे सभी को भक्त बना दिया। अभी क्या करेंगे महाराज, अभी सारे हमारे गुरुकुल में जितने भी थे राक्षस बालक सभी हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे, सभी विष्णु की भक्त बन गए। हिरण्यकश्यप ने बड़े क्रोधित हुआ, सांप की तरफ भाव भाव गर्जन कर रहा था। बोले बुला के लाओ सब मूर्ख को, किसको, प्रहलाद को लाओ मेरे सामने। अभी हिरण वो संधमर के आगे तुरंत ही वो राजदूत भी आ गए, उसको पकड़ के लेके गए। हिरण प्रहलाद ने बड़े स्वभाव में बड़े शांत दंत स्वभाव के थे, 5 साल के बालक थे, इनके स्वभाव के आधार पर वो दंड प्राप्त करने के योग्य नहीं थे। हिरण्यकशिप को क्रोधित देखकर प्रहलाद ने बहुत प्रयास किया उसके क्रोध को शांत करने के लिए, बड़े दम्यता से जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया चरण में, किसके, हिरण्यकशिप को। लेकिन हिरण्यकशिप को तो क्रोध शांत ने बड़े क्रोध सर्प की तरह से ही गर्जना फाँ फाँ करता था। इसको दंड देने की योग्य यदि वो प्रहलाद दंड के योग्य नहीं थे, हिरण्यकशिप ने कहा कि अरे मूर्ख तू मेरे महत्व ने तुम ऐसा ही कहे कि मेरे अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद तुम जानते हो जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायक के सहित कंपते हैं, तो फिर कहीं कहीं के दुष्ट तुम किससे बड़ किसके बल पर इतनी दुष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मेरे आज्ञा को कई तीनों लोग में कोई उल्लंघन नहीं करते। प्रहलाद ने कहे कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे राजन आप में से जिस बल के बारे में स्रोत के जानना चाहते हो वो आपका भी बल के स्रोत है, पावर हाउस एक ही है, उसी हाउस से आप मेरे को भी पावर मिल रहा है आपको भी मिल रहा है, दोनों का बल का स्रोत है कि एकमात्र भगवान विष्णु ही समस्त बल के स्रोत हैं, समस्त प्रकार के बलों के मूल स्रोत एक ही भगवान विष्णु है। वह न केवल आपका या मेरा बल है अपितु सबका एकमात्र बल है। आपके बिना किसी को कोई बल उनके बिना किसी को कोई बल नहीं दे सकता है। प्रहलाद ने ऐसे कहे तो हिरण्यकश्यप और गर्जना कर रहा था, बोला अरे मूर्ख तूने ऐसा विष्णु का भक्ति कर तू उसका मान तू उसका स्तुति कर रहा भक्ति कर रहा तुझे बल देता होगा, मेरा अपने बल में मैं बलिदान हूं। कौन कहा, हिरण्यकश्यप, मैं भगवान हूं, वो भगवान नहीं है, कौन, विष्णु। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहे कि पिताजी नहीं, भगवान कौन है, भगवान विष्णु है। पहले आप जैसे कई राक्षस भी आकर ऐसे ही कह कर गए पहले और सभी भगवान के हाथ में मारा गए हैं। प्रहलाद कहे कि आप अपनी असुरी प्रवृत्ति को त्याग दें, आप अपने हृदय में ही शत्रुओं को लेकर बैठे हैं। कि कौन शत्रु है? छह शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य। ये असुर शत्रुओं को पहचानिए पिताजी, इनको पहले त्याग दीजिए। आप विष्णु को क्यों शत्रु मानते हैं? विष्णु किसी के शत्रु नहीं है, हैं? वो सारे जगत के कल्याण करते हैं। प्राचीन काल के काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए जिन्होंने उन छह शत्रुओं को भी जीता नहीं सका। ये छह शत्रुओं को जीता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति इन छह शत्रुओं को विजयी होता है तो सारे जीवों पर समभाव रखता है। इसलिए पिताजी आप क्रोधित मत होइए, आप वृथा विष्णु को शत्रु मत मानिए। ये शत्रु आपके शरीर में बैठे, इनको ऐसे कह रहा था। हिरण ने कुछ कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे से भी ज्यादा संयमी समझ रहा अपने को है, है? तीनों लोक में सभी जानते हैं मैं 36,000 साल तक किस प्रकार तपस्या किया था। एक है बाया पैर की एक अंगूठे की बल पर खड़ा था, ब्रह्मादि देवता लोग ने भी मेरी इंद्रिय संयमता को प्रशंसा करते हैं, है? अरे मेरे से तू बड़ा संयमी बन गया, है? मेरा शरीर को सारा मांस चीटी खा खा कर मुझे अस्थि कंकाल सार कर दिए थे, तभी भी मैं संयमी होकर खड़ा था, है? मेरे से तुम ज्यादा इंद्रिय संयमी दिखा रहा है, लग रहा है कि तुम मेरे हाथ में मरना चाहता है। कौन कहा? हिरण्यकशिपु, है? अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त परम पुरुष का कोई दूसरा परम पुरुष कोई है ऐसे बनना करता, और कोई शक्तिशाली मेरे से भी है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है, लेकिन वह है कहां, इसको देखना चाहता हूं। कौन कहा? हिरण्यकशिपु, है? यदि वह सर्वत्र है तो मेरे समक्ष इस खंभे में क्यों नहीं है, है? ये घटना कहां पर चल रहा था? बातचीत हिरण्यकशिपु प्रहलाद की बातचीत कहां चल रहा था? आज भी वो स्थान है, अहोबिंद नृसिंह है, कहां पर? आंध्र में, वो उस पर्वत के ऊपर आज भी है, वो खंबा भी है जिस खंबा से प्रकट हुए थे। कौन? नृसिंहदेव। भक्त लोग जाते तो खंबा के से थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लाते हैं, उसके ऊपर नृसिंहदेव के रूप में पूजन करते हैं। तो खंबा आज भी जिस खंबे से थोड़ा खंबा उसी में प्रकट हुए थे नृसिंहदेव, उसी पर वहीं पर नृसिंहदेव ने इसका हिरण्यकशिपु का राजमहल था, राजप्रसाद था, वह दरबार था जहाँ पर वो बातचीत करता, परमात्मा ने सिंहासन से उतर कर प्रहलाद के साथ बातचीत कर रहा था। तभी क्योंकि तुम इतना अधिक प्रलाप कर रहे हो, अतएव अब मैं तुम्हारे सिर से तुम्हारे शरीर से सिर को छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारे परमाराध्य ईश्वर तुम्हारी किस प्रकार रक्षा करेगा, मैं उसे देखना चाहता हूं। कौन कहा? हिरण्यकशिपु, है? कहां छुपकी रहता है वो, मेरे सामने आ जाए। ऐसे कहकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर जब फटक ऐसे ही घूम रहा था अस्त्र मने क्रोधित चारों साइड में, अतिशय क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भत्सना की। उसे बारंबार साप देते हुए हिरण्यकशिपु ने अपने तलवार निकाली, अपने राज सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध के साथ खंभे पर मुष्टि प्रहार किया। क्योंकि देख रहा था प्रहलाद जी ने खंभे को देख रहे थे, खंभे को देख रहे थे, और वो कहा कि लग रहा है खंभे में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्रकृति नृसिंह पुराण में वर्णन आता है कि भगवान नृसिंहदेव ने पहले से ही खंभे के अंदर से इसको दर्शन दे रहे थे। किनको? प्रहलाद को। कहते कि भाई डरना नहीं, भगवान नृसिंह पहले से वहां दर्शन दे रहे थे। प्रहलाद को बोले डरना नहीं, मैं इधर हूं। तो इसलिए खंभे को ही दर्शन, खंभे में भगवान को दर्शन कर रहे थे प्रहलाद, और कहा कि खंभे को क्यों देख रहा है, है? क्या खंभे में तेरे भगवान है? बोले कि हाँ पिताजी, खंभे में भी है, सर्वत्र है। तो क्रोधित होकर जाकर, ये इतने क्रोधित थे लेकिन प्रहलाद बड़ा शांत थे, प्रहलाद एवं पूरे विशुद्ध सत्वगुण में प्रशांत थे, है? और जाकर क्रोधित होकर मुष्टि प्रहार किया। किसको? खंभे को, है? जब उसी खंभे से एक भयानक आवाज आया, जो मुष्टि प्रहार किया, भीषण आवाज गर्जना सुनाई पड़ा। ये गर्जना कभी भी कहीं सुना नहीं था। हिरण्यकशिपु ने आगे जितने भी राक्षस उसके दरबार में बैठे थे, उसके मंत्री सेनापति सब जितने भी राक्षस बैठे थे, कोई भी ऐसा गर्जना कभी पहले सुना नहीं था। जिससे ब्रह्मांड के आवरण भी विदीर्ण हो रहा था, यह आवाज तो देवतलोक देवलोक को भी भेद करके ब्रह्मालोक तक ब्रह्मलोक तक आवाज चला जा रहा था। भीषण का आवाज है, ये आवाज ब्रह्मादि देवताओं के निवास तक पहुंच गई। और जब देवताओं ने सुना तो उन्होंने सोचा कि ओहो, अब हमारे लोक का विनाश होने वाला, प्रलय हो जाने वाला। देवता लोग भी डर गए, ब्रह्मादि देवता भी भयभीत होकर कंपने लगे, क्या हो गया, ऐसे भीषण आवाज है। अपने पुत्र को जो वध करने का इच्छुक था हिरण्यकशिपु, इस प्रकार जो अदिति सूर्य को दिखाना चाहता था, सारे राक्षस के लीडर लोग ने भी भयभीत होकर चारों साइड ढूंढ रहे थे, ये स्रोत कहाँ है, ये जो आवाज आया कहाँ से आवाज निकाला, इनको पता नहीं लगता था कहाँ से आवाज आया। भीषण आवाज तो आ रहा था, बहुत विषाद, कान सभी कान बंद कर लिए सही जोर से, बोले इतनी आवाज कहां से आ रहा है, लेकिन कोई इसको पता ही नहीं चलता स्रोत कहां से आवाज आ रहा है। हाँ, ऐसे घोर ध्वनि सुने तो राक्षस लोग ने भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम को कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। उसी समय अपने दास प्रह्लाद की वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कि प्रह्लाद कहती कि खंभे में हे मेरा भगवान, मेरे भगवान सर्वत्र रहते हैं, तो इसलिए नारद मुनि ने कहते वासुदेव गोस्वामी नारद मुनि के वचन को उद्धृत करते हुए यहां पर कहते कि सत्यं विधातुं निजवृत्त्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां नमुगन्न मानुषम्। आपने दास प्रह्लाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात बहुत सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहां तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर से ही भगवान श्रीहरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। वह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का है, न मृगंग न मानुषम है, मनुष्य का नहीं था, मृग का अर्थ भी सिंह, तो सिंह ना सिंह ना मनुष्य का था। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए है। श्री नृसिंह रे भगवान की, भगवान में भी प्रकट हो गए। आप ध्यान में देख सकते हैं कैसे मूर्ति में होंगे, शांत मूर्ति में है? जब हिरण्यकश्यप ने खंभे को प्रहार किया, मुष्टि में प्रहार किया, भगवान ने उसे अंदर में भीषण गर्जना करते हुए है, सत्यं विधातुं निजभूत्य भाषितम्, अपने भूत्य अपने सेवक भक्त का वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए उसके अंदर से प्रकट हो गए निकाले, तो केश मूर्ति कैसे थे वो, उग्र सिंह है। मायापुर में जाओगे देखोगे, मायापुर में उग्र सिंह मूर्ति में बड़े उग्र मूर्ति थे, विषणा गर्जना करते थे है? और ऐसे प्रकट हुए, किसके लिए प्रकट हुए ना, सत्यं विधातुं निजभूत्य भाषितम्। यहां पर कहते कि नारद में कहते कि आपने भूत्य कौन, प्रह्लाद की वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान अपने वचन को टाल देते हैं, लेकिन भगवान भक्त की वचन को नहीं टालते हैं। कौनते प्रति जाना ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान कहते कि अर्जुन तुम इसको डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्तों की कभी नाश नहीं होता। भगवान स्वयं नहीं कह रहे, लेकिन अर्जुन कहते कि तुम कहो। भगवान कहते कि मैं तो कभी कभी मेरे वचन को भी टाल देता हूं भक्त के लिए, लेकिन यदि मेरे भक्त कोई वचन कहता है उसको कभी टालता नहीं, इसको सत्य प्रमाणित कर देता हूं। इसलिए आपने भक्त प्रह्लाद की वचन को सत्य प्रमाणित करने, प्रह्लाद जो कह दिए हिरण्यकशिपु को, हां मेरे प्रभु ये खंभे में है, प्रह्लाद की वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान नृसिंहदेव वहीं से प्रकट हो गए। लेकिन अन्यत्र प्रह्लाद महाराज जब आपने स्तुति करते हैं तो कहते कि ऐसा बात नहीं है, नृसिंहदेव जब प्रकट हुए थे वो अपने भूत्य नारद मुनि की वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि मेरे माँ ने जब नारद मुनि के आश्रम में थी, मेरे माँ ने भी मेरी सुरक्षा चाहते थे, इसलिए नारद मुनि को प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु हैं हे महामुनि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, मेरे प्रहलाद मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, ये जैसा समस्त प्रकार की भय से सुरक्षित रहेगा है, ये कभी भी भयभीत नहीं हो, समस्त प्रकार की क्लेशों से भय से मुक्त रहेगा। तो नारद मुनि ने भी वरदान दिया था, मेरे मां को कहा था कि चिंता मत करो, तेरे पुत्र है कि सदा निर्भीक रहेगा, सदा समस्त भय से मुक्त रहेगा, सदा भगवान के द्वारा सुरक्षित रहेगा। इसलिए आपने नारद मुनि के वचन को रक्षा करने के लिए ही प्रकट होकर मेरी को रक्षा कर लिए, क्यों नारद मुनि ने कहे थे कि मेरे मां को वरदान दिए थे कि मैं सदा सुरक्षित रहूंगा। भक्त को भी अपना प्रशंसा स्वयं लेना नहीं चाहता, यदि नारद मुनि कह रहे कि नहीं प्रह्लाद का वचन को प्रमाण सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान प्रकट हो गए, लेकिन प्रह्लाद कहते कि नहीं किसका वचन को प्रमाणित करने के लिए, नारद मुनि कहते थे कि मेरी मां को वचन दिया था कि मैं सदा सुरक्षित रहूंगा, तो इसीलिए भगवान ने प्रकट होकर नारद मुनि के अपने भृत्य, नारद मुनि भी उनकी भृत्य है, तब भृत्य भाषितम नारद मुनि के वचन को सत्य प्रमाणित कर दिए हैं। लेकिन कमेंटेटर भागवत के जो कमेंटेटर श्रीधर स्वामी कहते कि नहीं, उन्होंने ब्रह्मा जी के वचन को भी सत्य प्रमाणित किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना मनुष्य ना सिंह माने पशु के शरीर में मृत्यु होगा, दिन में ना रात में ना है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसके हाथ में प्रमाण, इसलिए भगवान सिंहदेव प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सारे वचन को भी रक्षा किया, ना वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई थे ब्रह्मा जी का सृष्टा तो वो है, ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं थे, ना मनुष्य थे ना सिंह थे ना कोई देवता थे, वो तो समस्त देवताओं के परे हैं, स्वयं भगवान विष्णु है, इसलिए ना दिन में थे ना रात में था, संध्या के समय में है, संध्या के समय में जो भी और दर्जा के दहली पर है लेकर वहीं पर भगवान ने ना जल स्थल आकाश में मने मरेगा नहीं, इसलिए भगवान ने अपने गोद में इसको रख दिए, कोई अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं, इसलिए भगवान ने इसको अपने नाखून के सहारा में फाड़ दिए हैं, वज्र के जिसकी वज्र भी घुस नहीं सकता, जिस त्वचा में जिस चमड़े में हिरण्यकश्यप के शरीर वज्र से भी अधिक कठिन था, इंद्र की वज्र भी उसके प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने आसान से अपने नाखून से इसको फाड़ दिए, इसलिए ब्रह्मा जी का वचन को भी रक्षा किया है। भगवान ने जो कार्य करते थे एक साथ सभी के कई प्रकार के उद्देश्य होता है, प्रह्लाद की वचन को भी रक्षा किया कि खंभे में भगवान है इसलिए प्रकट हुए, नारद जी की वचन को भी रक्षा किया, नारद जी ने कहे थे कि प्रह्लाद सदा सुरक्षित रहेगा, और ब्रह्मा जी का वचन को रक्षा करते हुए नरसिंह रूप में प्रकट होकर इसको भी फाड़ दिए, अंत में कहते कि नहीं ये भी प्रह्लाद आगे कहते कि मेरे पिताजी का वचन को भी भगवान ने रक्षा किया, किसका, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने कहा था कि अरे प्रह्लाद यदि मेरे से भी कोई अधिक शक्तिशाली है तो मेरे सामने क्यों प्रकट नहीं हो रहा है, मैं इसको देखना चाहता हूं, इसलिए हिरण्यकशिपु की जो इच्छा था उनको देखना चाहता था, किनको, उससे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो उसको देखना चाहता था, हिरण्यकशिपु से शक्तिशाली व्यक्ति भगवान ही थे नृसिंहदेव, इसलिए हिरण्यकशिपु जो देखना चाहता था इसलिए उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान भी प्रकट हो गए, इसलिए भगवान ने सभी की इच्छा पूर्ण किया, प्रह्लाद के वचन को सत्य प्रमाणित किया, नारद के वचन को, ब्रह्मा जी वचन को और हिरण्यकशिपु का भी वचन को, सभी का वचन को सत्य प्रमाणित करते हुए प्रकट हो गए। ये तो ड्रामा चल रहा था और उसमें चारों के चारों से कोई राक्षस नहीं, सारे भक्त थे, आम से है, हिरण्यकशिपु भी राक्षस नहीं है, वो भी कहां था, स्वर्ग के सॉरी वैकुंठ के दर्जे पर भगवान का ही द्वारपाल था, भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है, वो हमारे द्वारा बद्ध जीव नहीं था है? वो नित्य सिद्ध वैकुंठ के निवासी था है? भगवान ने हमारे हमको जैसे कभी कभी कुश्ती कसरत करने की इच्छा होती है, ये भगवान के पास में भी ऐसी इच्छा है, अब भगवान के साथ में कौन फाइटिंग करेगा, तो भगवान भी जब भी कभी कभी उनको भी ऐसे ही फाइटिंग कर कुश्ती कसरत थोड़ा खेलने की इच्छा होती, तो वो फिर आपने किसी पार्षद को भेजते इधर है, इसलिए भगवान ने ही स्वेच्छा से चारों कुमारों के द्वारा इनको अभिशाप देकर भेज दिए थे, पहले राक्षस शरीर में आए थे, क्योंकि जब उस समय कहते कि देखो भगवान जो लीला करते हैं बद्ध जीवन के साथ कोई लीला नहीं करते हैं, नृसिंहदेव भगवान के लीला अवतार हैं, वो लीला ऐसे बद्ध जीवन से आम जैसे बद्ध जीवन के साथ में लीला नहीं करते हैं, ये भगवान के साथ में जो ड्रामा करने वाले सभी में नित्य सिद्ध होते हैं है? गौरांगे संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, तो इसलिए ये चारों जो देख रहे थे सीन में अभी नृसिंहदेव के सामने चारों का नाम सुन रहे सभी भगवान के भक्त है, हम सोचते कि नारद जी भक्त है और प्रह्लाद भक्त है, ब्रह्मा जी भी चलो भक्त है, लेकिन हिरण्यकशिपु भी भक्त है, वो भी वैकुंठ के दर्जे पर उनके द्वारपाल था, नित्य सिद्ध वैष्णव था। और भगवान ने चाहते थे कि कहते थे कि नहीं, चारों जो चारों कुमार ने अभिशाप देकर फिर भगवान विष्णु के साथ उनके संपर्क को देखे तो अपना अभिशाप वापस करना चाहते, लेकिन भगवान कहे कि नहीं नहीं वापस नहीं करना अभिशाप, ये मेरा इच्छा ही सब हुआ है, ठीक है वो जाएंगे राक्षस जोनि में जाएंगे। लेकिन भगवान ने इनको ऑप्शन दिया था, पद्म पुराण के आधार पर कहा था कि देखो तुम जब मेरी शत्रु बन के रहोगे 3 जन्म की बात वापस आ जाओगे मेरे पास, लेकिन मित्र बन के रहना चाहते तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जय विजय कहे कि प्रभु 7 जन्म इतने दीर्घ समय आपकी विच्छेद नहीं सहन कर सकेंगे, चाहे आपको शत्रु बन जाए लेकिन 3 जन्म से वापस आ जाए। अब भगवान भी चाहते थे वीर रस को आस्वादन करने के लिए, वीर रस को, तो इसलिए माध्यम बने के बोला भगवान को वीर रस के आस्वादन करने के लिए, आस्वादन कराने के लिए ये जय विजय ही 3 बार आए। पहले जन्म में ये हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में आए, दूसरे बार रावण और कुंभकर्ण की बारे में आए रूप में आए, फिर तीसरे बार शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पधारे। तो इसलिए ये सभी भगवान के ही सेवक थे, हैं जो देख रहे हैं सीन में अभी, तो प्रकट अभी प्रकट हो गए भगवान नृसिंहदेव अपने भक्तों की वचन को सत्य प्रमाणित करते हुए। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम्, अपने भृत्य अपने सेवकों की वचन को प्रमाणित करने के लिए व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मन, सर्वत्र उनकी स्थिति है, सर्वत्र विद्यमान है। प्रह्लाद के वचन को विशेष रूप में सत्य प्रमाणित करते हुए हैं, अदृश्यताम अद्भुत रूपम उद्वहन, एक अद्भुत रूप धारण करके स्तंभे सवायंग न मृगंग न मानुषम, ना सिंह था ना मनुष्य का था, मुख उसने सिंह की और शरीर गर्दन से नीचे, शरीर पूरा मनुष्य का, एक उग्र मूर्ति में प्रकट हुए हैं अपने भक्तों के अपने वचन को सत्य प्रमाणित करते हुए। और इनको जब देखा हिरण्यकश्यप ने देखा, पहले देखा बड़ा सावधानी से खड़ा कर देखा, राज्य भगवान तो उग्र मूर्ति में खड़ा होकर भीषण गर्जना करते थे, सारे राक्षस लोग ने कान बंद कर आए बड़े, लेकिन हिरण्यकश्यप सतर्कता से देखा, कहा कि अच्छा लगता है कि वो कौन भगवान विष्णु ही है, ये विष्णु ही ऐसा ही कपट से ऐसे प्रकट हुआ। लेकिन फिर भी वो भयभीत नहीं हुआ, कहा कि अच्छा मेरे साथ में कौन लड़ेगा, चाहे भगवान विष्णु ऐसे प्रकट हुआ है मुझे मारने के लिए सोचते, मुझे वध करने के लिए ऐसे चक्रांत करके ऐसे ही रूप धारण कर प्रकट हुआ, लेकिन मुझे कौन मार सकता है, कौन सोच रहा था। हिरण्यकशिपु है जो हीरो और विलियन होते हैं, विलियन सोचता कभी मैं हार जाऊंगा नहीं, वो भी सोचता कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं। हिरण्यकशिपु भी यहां पर विलियन के रोल निभा रहा था भगवान नृसिंहदेव के सामने, और उन्हें ऐसे सोचने लगा कि देखा तो भगवान का रूप को देख, पिघले सोने के सदृश था, भगवान के रूप कैसा था, पिघले सोने के समान था, उनकी क्रुद्ध आंख के कारण वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था, उनके चमकीले आयाल उनके भयानक मुखमंडल पर फैले हुए थे, उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे, उनकी तीक्ष्ण जीभ लड़ाई के तरवाल के समान इधर उधर चल रही थी, उनके कान खड़े थे उनके तथा स्थिर थे, उनके नथुने तथा खोला मुख पर्वत की गुंफा जैसे लग रहे थे, उनके जबड़े फैले हुए थे जिससे भय उत्पन्न हो रहा था, और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था, उनकी गर्दन अत्यंत छोटी था तथा मोटी थी, उनकी छाती चौड़ी थी तथा कमर पतली थी, उनके शरीर के रोएं चंद्रमा की किरण के समान श्वेत लग रहे थे, उनकी भुजाएं चारों दिशाएं में अशुभ धूर्तों तथा नास्तिकों का वध करती हुई ऐसा लग रहा थी मानो सैनिकों को टुकड़ाएं टुकड़ियां हो, और वे शंख चक्र गदा कमल और अन्य दिव्य आयुध में युक्त थे। कौन? नृसिंहदेव। प्रकट होकर वो अपने रूप को अपने विशाल बना लिए हैं, अस्त अस्ते विशाल का रूप धारण कर लेते, इस इनके जो सिंह के शरीर में जैसे बाल होता है उन गर्दन, वो बाल जब ऐसे बिखरते थे ऊपर को बादल समय से भाग जाते थे, स्वर्ग में कोई देवता लोगों ने आते थे देखने के लिए ऊपर, उनके विमान उसे टक्कर खा के सब गिर जाता था दूर दूर, जाकर एक प्लैनेट से एक ग्रह से पिछड़ कर हमने धक्का खाकर दूसरे है लोक में जाकर पड़ता था, गिरता था। इतने भीषण काय रूप धारण करके नृसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से कहते, अरे क्या है ये, अधिक योग शक्ति को धारण करने वाला विष्णु ने मेरे सामने ऐसा ही प्रकट हो गया, ये योजना किया मुझे मारने के लिए। हे लेकिन यार मुझसे युद्ध कौन कर सकता है, मुझे कौन मर्डर कर सकता है, कौन सोचा हिरण्यकश्यप ऐसा सोचकर है आपने तरवाल को निकाला, तरवाल को हार हस्त में धारण करके मैं लड़ाई करने के लिए ना, पहले गदा को निकाला, गदा भाव लड़ाई करने के लिए कूद पड़ा, किसमें नृसिंहदेव के ऊपर है, जैसे कोई सांप को ही मैंने जो कोई सोचता कि मैं गरुड़ से युद्ध करूंगा है, ऐसे लगता है कि जैसे छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिर कर अदृश्य हो जाता है, उसी तरह जब हिरण्यकश्यप ने तेजमय भगवान पर आक्रमण कर लिया तो वह अदृश्य हो गया। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि भगवान सत्वगुण के स्थिति में रहते हैं और प्राचीन काल में सृष्टि के समय अंधकारपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उन्होंने ही आध्यात्मिक तेज से पूरा सृष्टि को प्रकाशित किया था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने भगवान के मैंने क्रोधित भगवान ने पहले आक्रमण नहीं किए, पहले कौन आक्रमण किया, हिरण्यकश्यप। भगवान तो खड़े होकर गर्जना करते थे, ये आक्रमण शुरू कर दिया पहले है। अत्यंत क्रुद्ध उस महाअसुर हिरण्यकश्यप ने तेजी से नृसिंहदेव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया, पहले प्रहार करने लगा गदा में भगवान के वक्ष स्थल में है, उन्हें मारने लगा भगवान को। भगवान नृसिंह ने कुछ नहीं बोलते थे, थोड़ा समय तो गदा समय तो उसको पकड़ लिए, कैसा पकड़ लिए, जैसे कोई चूहा को सांप, सॉरी सांप पकड़ लेता है, बिल्ली पकड़ लेता है किसको, चूहा को पकड़ लेता है, बा कोई गरुड़ जैसे कोई सांप को पकड़ लेता है, वो तो आसान से भगवान इसको गदा समेत पकड़ लिए, पकड़े पूरा और छटपटा था तब उन्हें उसको निकालना चाहता था, निकाल नहीं पाता था, लेकिन जैसा कोई है कोई बिल्ली तुरंत चूहा को पकड़ के मारता नहीं, थोड़ा थोड़ा छोड़ देता, थोड़ा काट इसको थोड़ा मैंने काट के फिर छोड़ देता, फिर वो इधर उधर घूमता फिर पकड़ता है। भगवान ने सोचे कि तुरंत सिंह के ये सिंह के रूप में प्रकट हुए थे, सिंह भी जो शिकार करता है तुरंत मारता नहीं है, तो उसको थोड़ा छोड़ दिए, हिरण्यकश्यप को थोड़ा फिकल हाथ से फिसल जाने दिए। हिरण्यकश्यप छोड़ता था कि मैंने इसे पकड़ के रखे थे, इसको पूरा हिल रहा था भय, मैंने निकाल नहीं पा रहा, लेकिन भगवान ने थोड़ा ढीला कर दिया तो निकल गया, निकल जाकर थोड़ा बाहर निकल के थोड़े दूर में जाकर थोड़ा बैठा, थोड़ा सा श्वास अच्छा से है, अच्छा से श्वास लेकर फिर बोला कि अच्छा लग रहा है कि मुझे डर गया, कौन सिंह है ये अभी विष्णु मुझे डर गया। लेकिन देवता लोगों ने हाहाकार करने लगे, देवता लोगों ने सोचे कि अरे हिरण्यकश्यप भगवान के हर्ष से निकल गए, देवता लोगों ने सब स्वर्ग में आकर अपने अपने विमान में बैठकर देख रहे थे लड़ाई किसका, नृसिंहदेव और हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप जब भगवान के हाथ से निकल गया आकाश को देखने लगा, देवता लोगों ने कमने बोले पता नहीं अभी जी ये जिन बच जाएगा ना अभी हमको सब छोड़ेगा नहीं है। देवता लोगों ने भयभीत हो अच्छा नहीं समझे, बोले नृसिंहदेव इसको समाप्त कीजिए जल्दी जल्दी है, अभी आपके हाथ से फिसल गया है, बड़े भयभीत हो गए। लेकिन भगवान देखिए हिरण्यकश्यप ने पहले इस टाइम गदा को फेंक दिया, गदा तो गदा छोड़ के तरवाल निकाल लिया, तरवाल निकाल कर फिर आक्रमण करने के लिए भागा है। भगवान के ऊपर जो फिर तरवाल लेकर आक्रमण कर दिया हाँ, तभी भगवान ने बहुत आसान से अट्टहास करते बहुत जोर से हंस रहे थे, कौन नृसिंहदेव अट्टहास करते थे, ये अट्टहट हंस करने के कारण वो आंख बंद कर देखना नहीं चाहता था, नृसिंहदेव की मुख को देखने से इसको भय आ जाता था। हिरण्यकश्यप से ही तरवाल तो घुमा रहा था लेकिन एक हाथ में ढाल पकड़ा था तरवाल, लेकिन आंख बंद करके देखे वो भीषण गर्जन को सुनने से सुन नहीं पाता था कि भगवान को देखने की इसको हिम्मत नहीं, आंख बंद करके तरवाल घुमाता था, तरवाल को आंख बंद कर घुमाता था। तो भगवान ने पकड़ लिया इसको है, तो भी भगवान सर्वशक्तिमान भगवान नारायण नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने का स्थान छोड़े बिना अपनी तरवाल ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज पक्षी के बाज की गति में आकाश में चला जाता था, कभी पृथ्वी पर चला जाता था। वह नृसिंह की हंसी के भय से अपनी आंख बंद कर दिया था, जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी तरह भगवान नृसिंह ने उस हिरण्यकशिप को पकड़ लिया जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। जो ही पकड़े जाने पर वह अत्यंत पीड़ित होकर इधर उधर तथा चारों ओर अपने अंग हिलाने डुलाने लगा है? कि नृसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोद में रख लिया और अपनी जंघ का सहारा देकर उस सभा भवन के दहली पर अपने हाथ के नाखून से सरलता पूर्वक उस राक्षस को चीरने भिन्न कर दिया, फाड़ दिया शरीर को पूरा है, शरीर को फाड़े तो उसकी खून में है पूरे भगवान नृसिंह देव के है, जो इनके जब बाल थे सभी में खून के छिड़का सब गिरा। पर नृसिंह देव बड़े विभ्रत रूप से, भगवान विष्णु कभी ऐसा ही अवतार नहीं लिए हैं, ऐसे बड़े भयंकर दिखाई पड़ते थे भगवान है। और भगवान नृसिंह के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छीटों से सने गए, क्रोध है पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना संभव नहीं था। वे अपने मुंह की करों की जीभ से चाट रहे थे, ऐसे चाट रहे थे लोग, जो खून सब लग गिरा हुआ तो चारों साइड नृसिंह देव ने किसका हिरण्यकशिप का फाड़ने के कारण मुंह से कोरों की जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकशिप की उधर से निकली अंतों को माला जैसे पहन ली, अंतों की माला। भगवान कैसे माला पहनते हैं? हम सोचे कि भगवान वैजयंती माला फूलों की माला पहनते हैं, कृष्ण कैसे माला पहनते? वैजयंती माला पहनते हैं, पांच प्रकार के अलग अलग बहुत सुगंधित पुष्प से माताएं बहुत सतर्कता से कितनी सुंदर माला पहनाते हैं भगवान को, भगवान ऐसे माला पहनते हैं। लेकिन अभी भगवान नृसिंह ने कैसे माला पहना? हिरण्यकशिप को फाड़ दिया, इसके दिल को पहले फाड़ कर, इसके शरीर को, इसके दिल को पहले निकाल उखाड़ के फेंक दिया एक साइड में, इसके बाद जो अंत था अंत को सब निकाल कर माला की तरफ पूरे गर्दन में लिपट लिए हैं, हिरण्यकशिप के अंत की माला है। तभी हिरण्यकशिप के उधर से निकली अंत को माला से सुशोभित थे, वे इस तरह प्रतीत हो रहे थे मानो किसी सिंह ने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। उसको हिरण्यकशिप को फाड़ कर उसके अंत की माला में गले में धारण कर लिए और अनेकानेक भुजा वाले भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिप का हृदय को निकाल लिया और उसको एक साइड में फेंक दिया। फिर भी असुर के सैनिकों की ओर मुड़े, क्योंकि हजार संख्या में राक्षस भी आक्रमण करने के लिए आए। जो हिरण्यकशिप का वध हो गया उसके जो अनुचर थे, उसके जो समर्थक थे, अन्य सारे राक्षस हजारों संख्या में अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आए मारने के लिए, किनको? नृसिंहदेव की तरफ है। हजार संख्या में झुंड से भगवान से दौड़ने आए थे, हाथों में हथियार लिए थे, लेकिन भगवान नृसिंहदेव के भयंकर गर्जन कर रहे थे, गर्जना सुनकर वो लोग ने आंख बंद कर रहे थे, भयभीत हो रहे थे। लेकिन हिरण्यकशिप अत्यंत स्वामी भक्त थे, वे नृसिंहदेव के ऊपर आक्रमण कर दिए। लेकिन भगवान नृसिंहदेव ने अपने रूप को और उग्र बढ़ाया, हजार हजार हाथ भगवान के शरीर से निकलने लगे, चारों साइड में हाथ व्यक्त हो गया, आगे पीछे सब जगह जितने भी राक्षस जहां भी थे भगवान ऐसे ही हाथ को घुमाकर सभी को फाड़कर फेंकते रहे हैं। कोई अस्त्र शस्त्र का आवश्यकता नहीं थे, जैसे हिरण्यकशिप को नाखून में फाड़ देते सारे राक्षस को फाड़ फाड़ के सब फेंक रहे थे चारों साइड है। उन्मत्त होकर भगवान नृसिंहदेव ने पीले रस को आस्वादन कर रहे थे। भगवान सभी प्रकार के रस आस्वादन करते हैं, हैं? हम सोचते हैं केवल कौन सा रस, भगवान ने केवल दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य शांत रस पांच रस के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान भी कभी कभी कौन सा रस को आस्वादन करते हैं? वीर रस को भी आस्वादन करते हैं, हैं? ऐसे वीर रस को भी उनके ही नित्य सिद्ध पार्षद ही इनको आस्वादन कराते हैं, कोई बद्धजीवी इनको आस्वादन नहीं कर सकता, करा नहीं सकता, भगवान ने उसके साथ ऐसा ही लड़ा नहीं करते हैं। भीष्मदेव ने भी जब लड़ रहे थे महाभारत युद्ध में, भीष्मदेव ने भी ऐसे बाण तीर चलाते थे किसके सर ऊपर? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, क्योंकि सारथी बनकर बैठे थे अर्जुन के रथ में, अर्जुन को रक्षा कर रहे थे, इसलिए कई तीर जाकर भगवान के शरीर में लगता था। किसका तीर? भीष्मदेव के तीर, भीष्मदेव के तीर भगवान के शरीर में विद्ध करने से खून निकाल रहा था, लेकिन भगवान ने फिर भी इसको आस्वादन कर रहे थे, क्रोधित नहीं हो रहे थे, उनको आनंद, उनको दुख नहीं दे रहा था, उनको आनंद प्रदान कर रहा था। भगवान कभी कभी ऐसे वीर रस को आस्वादन करते थे। यहां पर भी जे हिरण्यकशिप ने भी भगवान को वीर रस के आस्वादन कराए, कोई साधारण हमारी तरह बद्धजीव वो भी नहीं था, वो भी आध्यात्मिक जगत से वैकुंठ के दर्जे पर नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद था जय के रूप में। तो इसी प्रकार भगवान ने एक लीला के माध्यम से कई प्रकार के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। और नृसिंहदेव के सिर के बाड़ों से बादल हिलकर ही इधर उधर बिखर गए, इसमें देवता लोग भी भयभीत हो रहे थे। और लेकिन देखे कि जब ये भयभीत थे तो देवता लोग, अभी देखे कि नृसिंहदेव का मैंने नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को विदारण कर दिए, हिरण्यकशिपु का बद्ध हो गया, तभी सब देवता लोग ने थोड़ा होश आ गया। वो लोग ने फिर अपने अपने विमान में अपने अपने फिर इस उतारे, उतार कर ब्रह्मा जी को आगे करके सब गए। पूरे पूरे पास में जाने की इसकी हिम्मत नहीं था। भगवान नृसिंहदेव ने सारे राक्षसों को वध करके ही हिरण्यकशिपु के सारे सैनिकों को वध कर दिया, और कोई भी था नहीं। कुछ लोग दो थे, भाग गए सब इधर उधर, और कोई चारों साइड देखे कोई भी और सामने चैलेंज देने के लिए नहीं आ रहा। तो फिर गर्जना करते भयंकर गर्जन करते हुए हिरण्यकशिपु का ही सिंहासन में जाकर बैठ गए। जिस सिंहासन में हिरण्यकशिपु बैठता था उसी सिंहासन में कौन बैठ गया, नृसिंहदेव बैठ गए। नृसिंहदेव के बैठे तो गए थे लेकिन भीषण गर्जना करते थे, उग्र मूर्ति में थे। हिरण्यकशिपु के अंत को माला के रूप में धारण किए थे, पूरे खून में सीना हुआ था उनके दाढ़ी, उनके बाल सब चारों साइड में। और ऐसे तब देवता लोग दूर दूर में खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, दूर पास में नहीं आते थे। पहले ब्रह्मा जी स्तुति किए, फिर शंकर जी स्तुति किए, फिर 33 कोटि देवता है, जक्ष रक्ष किन्नर नाग है, मुनि ऋषिगण जितने भी बड़े बड़े ऋषि सभी स्तुति किए। लेकिन सारे स्तुति को सुन के भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, फिर भी गर्जना करते थे, भीषण गर्जना करते थे। देवता लोग ने सोचते थे कि अभी तीनों लोक भस्म हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा लग रहा है। एक तो हिरण्यकशिपु को डरते थे, वो उसे हिरण्यकशिपु को बद्ध हो गया, लेकिन भगवान ही स्वयं सब कुछ समाप्त कर देगा लग रहा है। विष्णु सभी लोग अपना स्तुति में भगवान की महानता को वर्णन करते रहे, हिरण्यकशिपु का को मार डाले तो बहुत महान कार्य किए सब कहते थे। लेकिन जब विष्णु दूतों की स्तुति की, विष्णु दूत भी आ गए वैकुंठ में, सुनंद आदि सब विष्णु दूत भी आ गए, उन्होंने हाथ जोड़े कहे कि भगवान ने आप अच्छा किया, ये जय पे जो ये हिरण्यकशिपु था ये भी आपका ही दास था, ये भी पूर्वजन्म में कौन था हमारी जैसे एक आपका ही सेवक था, जय था, और आपने इसको बद्ध करके बहुत अच्छा किया, फिर वो आपके धाम में वापस जल्दी आ जाएगा। विष्णु दूतों ने सत्य को प्रकट किया, लेकिन फिर भी भगवान शांत नहीं हो रहे थे, क्रोधित होकर बहुत भीषण गर्जना कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहे कि क्या होगा, तो इसलिए उन्होंने कहे कि कोई व्यक्ति क्रोधित होता तो उसका पत्नी इसको शांत कर सकता है। अब भगवान है, भगवान की पत्नी लक्ष्मी श्री जी की तरफ देखे ब्रह्मा जी, कहे कि देखो माँ, आप तीनों लोग की जननी हो, हमको रक्षा कीजिए, आपके पति को शांत कीजिए, क्रोधित है। देखो कितनी क्रोध को शांत। लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी कहने पर तो थोड़ा आगे गए, लेकिन फिर डर के भागे पीछे, बोले नहीं मैं नहीं जा सकता हूं, ऐसा क्रोध मूर्ति कभी भी मैंने देखा, पता नहीं ये मेरा पति है कि और कोई हो सकता, ये सब भीषण काय रूप नहीं देखा, कभी नहीं देखा। लक्ष्मी की ये भी भय होता था कि हो सकता कि मैं बार पास में जाऊं तो क्या लग जाएगा, थप्पड़ भी लग जाएगा जोर से, इतना क्रोध मूर्ति में गर्जना कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, मेरे से नहीं होगा, वापस आ गए। बोले ब्रह्मा जी कहे कि और कैसे होगा, फिर उनके पत्नी श्री जी लक्ष्मी जी ने भी इनको शांत करने की हिम्मत नहीं किया, अभी तो कैसे इनको शांत करेंगे। तब ये छोटा सा बालक कौन खड़ा था, प्रह्लाद। प्रह्लाद को ब्रह्मा जी ने बोले, बोले प्रह्लाद देखो तुम्हारे पिताजी को बद्ध करके उग्र मूर्ति धारण की है भगवान, और तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुमको ही रक्षा करने के लिए रूप धारण किए, तुम्हारे पिता को बद्ध किए, और तुम जाओ, तुम प्रयास करो शांत करने के लिए। सभी लोग भयभीत थे लेकिन ये नन्हा सा बालक प्रह्लाद भयभीत नहीं थे। जैसे सिंह की बच्चा सिंह को नहीं डरता है, डरता है नहीं, सिंह चाहे कितने उग्र हो। प्रह्लाद ने बहुत आसान से शांत, प्रह्लाद जैसे कहे माला एक दे दिए ब्रह्मा जी ने, माला लेकर सीधे चले गए सामने, जाकर दंडवत प्रणाम किए, चरण में गिर पड़े, दंडवत गिर कर प्रणाम किए। तो अपने भक्त प्रह्लाद को प्रणाम करते हुए देखते हुए भगवान की क्रोध एक सेकंड में शांत हो गया। अब जो उग्र सिंह का मूर्ति था अभी शांत मूर्ति हो गए, पूरे एक सेकंड में शांत हो गया। नीचे देखने लगे प्रह्लाद को, बात्सल्य में इनका हृदय भर गया, तुरंत इनको उठाए, किनको, प्रह्लाद को उठाकर खड़ा किया और सिर में इसका हाथ रख दिए। भगवान जब इसके श्री प्रह्लाद के सिर में हाथ रख दिए तो उसके शरीर में, प्रह्लाद के शरीर में दिव्य ज्ञान के संचार हो गया। जैसे ध्रुव के सिर पर शंख रख दिए थे थोड़ा, तो ध्रुव भी बहुत सुंदर स्तुतियां करने लगे। इसी प्रकार प्रह्लाद महाराज की अंतकरण में दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, समस्त अज्ञानता नष्ट हो गया है। तो उन्होंने बहुत भगवान नृसिंहदेव की बहुत सुंदर स्तुतियां की, जिसको हम पहले 5-6 दिन में से प्रह्लाद की स्तुति की चर्चा हो रहा था, और वहां पर उसकी चर्चा करने का समय नहीं है। इसलिए प्रह्लाद जी की स्तुति बहुत प्रसिद्ध स्तुति है, प्रह्लाद जी महाजन है। उन्होंने स्तुति करके हमको सिखाया, मैंने उनके प्रार्थना करके सिखाया कि भगवान की कैसा स्तुति करना चाहिए। विशेष रूप में महाभागवत वैष्णव होने के कारण इन्होंने कि गोष्ठ्यानंदी वह वैष्णव की भावना को व्यक्त करती है। प्रह्लाद नृसिंहदेव को प्रार्थना किए कि हे प्रभु कि मैं आपके साथ में, नृसिंहदेव ने प्रह्लाद महाराज को कहते थे कि तुम मेरे साथ चलो, हे प्रह्लाद तुम बहुत दुख सहे हो, हिरण्यकश्यप ने तुम मेरी भक्ति करने के कारण बहुत सताया तुमको, अरे दूसरों को तो लेने के लिए मेरे दूत आते हैं वैकुंठ से आकर इनको लेके जाते हैं, हैं? जैसे आपके यहाँ पर तुकाराम को लेने के लिए आए थे, कौन वैकुंठ से विमान आया था देहू में, कौन सा देहू है, ध्रुव महाराज को लेने के लिए विमान में आया था, लेकिन नृसिंहदेव की कहे प्रह्लाद तुमको लेने के लिए तो मैं स्वयं आया हूं, स्वयं तुमको साथ में लेके जाऊंगा, दूसरों को लेने के लिए तो मेरे दूत आ जाते, विमान आ जाता चले जाते हैं, लेकिन तुमको लेने के लिए, तुम जैसे भक्त, तुम ऐसे महान भक्त हो, तुमको लेने के लिए मैं स्वयं पधारा हूं, तुम मेरे साथ चलो मेरे धाम में। लेकिन प्रह्लाद ने कहे कि नहीं, मैंने मेरे गुरु जी नारद जी की मार्गानुसरण करूं कि आपके साथ चलूं, आप जो मेरे सामने अभी प्रकट हुए हैं, यदि मैं आपकी भक्ति नहीं किया होता आप थोड़ी मेरे सामने प्रकट होते, लेकिन आपकी भक्ति करना मुझे सिखाया कौन, नारद मुनि ने मुझे सिखाया। अभी मेरे गुरु जी से अनुमति न लेकर, गुरु जी की अनुसरण न करके मैं आपके स्वार्थ पर होकर ये सारे बद्ध जीवों को, जो भी मेरे आपका ही संतान है मेरे भाई के सदृश है, ये सभी को ये संसार में छोड़कर बद्ध दुनिया में स्वार्थ पर होकर मैं अकेले कैसे आपके साथ चले जाऊंगा, ये उचित नहीं होगा, इसलिए मुझे मेरे गुरु की सेवा करने दीजिए। तब भृत्य से, तब भृत्य सेवा, आपकी भृत्य नारद मुनि की सेवा में मुझे छोड़ दीजिए। नारद मुनि जैसा ही भ्रमण करते हैं और आपकी प्रचार करते हैं, मुझे भी ऐसे ही प्रचार कार्य में लगा दीजिए। कौन कहा? प्रह्लाद। महाभागवत वैष्णव और आचार्य को महाजन की भूमिका निभाते हुए हमको मार्गदर्शन करते हैं कि प्रकृति में भगवान को यदि कोई प्रसन्न करना चाहता है, भगवान के सबसे बड़ा प्रिय बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रचार ही सार। भगवान गीता में भी यही कहे, न चतस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकुत्तम भविता न च मे तस्मादन्य प्रियोतर भुवि। उससे बड़ा प्रिय मेरी कोई नहीं है जो इस भगवत गीता की वाणी को प्रचार करता है। भगवान कहे कि उससे बड़े प्रिय कोई है ना, भविष्य में भी होगा, वो सबसे मेरी प्रिय है। इसलिए महाजन प्रह्लाद को इस बात पता था, उन्होंने कहे कि मैंने आपके साथ में जाने के लिए तैयार नहीं हूं, हे नृसिंहदेव मेरे को मेरे गुरुजी नारद मुनि के मार्गानुसरण करने दीजिए, मेरे गुरुजी भी पूरा योग्य है आपके धाम में जाने में रहने में, कौन? नारद मुनि। लेकिन फिर भी वो आपके धाम में नहीं बैठा रहते, वो सदा भ्रमण करते हैं और आपकी कीर्ति को प्रचार करते हैं। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, अपने बिना बजाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भ्रमण करते करते प्रचार करते हैं। ये भ्रमण का जहां भी लोग प्रचार करते, प्रचार कैसे चल रहा देखने के लिए भी आते हैं, कौन? नारद ब्रह्मा आदि भक्त महाजनगण। एक बार लंदन में प्रभुपाद जी ने भागवत की कक्षा दे रहे थे, राधा लंदन मिश्र के सामने मंदिर में भागवत कक्षा देते थे, हठात समाधि से जैसे हो गए, प्रभुपाद जी बोलते हठात किसी देख रहे ऐसे पूरे स्तब्ध होकर रह गए। कोई कुछ सोचा क्या हुआ, क्या हुआ? 10-15 मिनट बीत गया, प्रभुपाद जी कुछ बोलना बंद कर दिया, पूरे सभी लोग बैठे क्लास में, क्या हुआ? जो फिर कुछ 15 मिनट के बाद फिर प्रभुपाद जी किसी जिसको सम्मान कर रहे थे सही मुद्रा में थे, फिर उसके बाद फिर बोलना, फिर प्रकृतिस्थ हो गए, फिर बोलना शुरू किए। क्लास की बात में सब पूछे कि प्रभुपाद ऐसा क्यों हुआ, आप क्या कर रहे थे, इतने 15 मिनट पूरा स्तब्ध हो गए, ऐसे किसको देख रहे थे, किसको सम्मान कर रहे थे, ऐसे लग रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा आप लोग नहीं देखा, आज हमारा मंदिर में नारद जी और ब्रह्मा जी पधारे थे, वो मंदिर में आज आए थे ब्रह्मा जी और नारद जी में पधारे थे देखने के लिए कि भक्ति वेदांत स्वामी कैसे प्रचार कर रहे हैं, कैसे प्रचार चल रहा है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कैसे प्रचार करते उसको देखने के लिए वो भी आए थे, ब्रह्मा जी और नारद भी आए थे। बद्ध जी उनको दर्शन नहीं कर पाते, जो मुक्तात्मा उनको जिसको दर्शन देना चाहते दर्शन कर सकता है, इसलिए आज भी उस राधा लंडनेश्वर मंदिर में दो आसन रहता है अल्टर में, एक ब्रह्मा के लिए एक नारद के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा कोई दूसरे आसन भी रखो, कभी कभी ऐसा ही कोई आ जाते हैं महाजन लोग को भी बैठने बैठेंगे साथ में, हम बासस में बैठेंगे और महाजन लोग आएंगे ऐसे खड़े रहेंगे अच्छा नहीं है, इसलिए उनके लिए भी आसन रखो। इसलिए ब्रह्मा के लिए नारद के लिए भी आसन है, ये ब्रह्मा नारद ऐसे प्रकार प्रहलाद इनकी दायद ये महाजनगण स्वयं प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, ये सदा भगवान की धाम में नहीं बैठा रहते हैं। आप बारह महाजन के नाम सुने हो कौन कौन, शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलिर्व्यास की वयम। जमराज ने जमदत्त को कहा कि ये बारह महाजन भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं, हैं? यह स्वयंभू स्वयं ब्रह्मा नारद शंभु शंकर जी प्रह्लाद जनक भीष्म बलि महाराज व्यासकी व्यासदेव जी की पुत्र बलि व्यासकी वयम स्वयं में जमराज कहे हम बारह व्यक्ति भागवत के रहस्य को जानते हैं, लेकिन ये बारह महाजन कोई अपने धाम में बैठे नहीं, भगवान के धाम में बैठे हुए नहीं, ये सभी प्रचार कार्य में लगे हुए। आज भी बलि महाराज सुतल लोक में प्रहलाद ने सॉरी बलि महाराज के लोक में बलि महाराज के साथ में प्रहलाद महाराज भी निवास करते हैं। ये सारे महाजन क्या करते हैं, प्रचार में लगे रहते हैं, जा रहे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु हया तारो ही देश। जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले जीव जागो कत निद्रा जाओ माया पिसा चीर को कत निद्रा जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले जीव जागो तुम्हारे लईते आमी कौनो अवतार तुम्हारे ल आमी बिना बंधु यार के आछे तुम्हार आमी बिना जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले जीव जागो इन छुओ साधु माया नासीबार लागी हरे कृष्ण महामंत्र लाओ तुम्हें मागो हरि नाम
जोर जागो जोर जागो गौराचंद्र बोलो जोर जागो कतो निद्रा जाओ माया पिसा चिंद कत निद्रा भक्ति दिन द प्रभु चरणी पड़िया भक्ति दिन से हरि नाम मंत्र लैला मगुआ से हरि दूर जादो दूर जादो गौराचंद्र बोले दूर जादो कत निद्रा जाओ माया पिसा चिंद कत निद्रा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
इसलिए प्रहलाद महाराज जैसे महाजन ने कहे कि मैं आपके साथ में भगवत धाम नहीं जाऊंगा किसको कहे नृसिंहदेव को है? आप क्या करोगे आपके सामने भी विमान आ जाएगा जैसे बैकुंठ से विमान आ गया तुकाराम को लेने के लिए आए थे आपका आप भी भक्ति किया तो थोड़ा इधर पहुंच गया सो आके एक कोटियार में खड़ा बोला जिसको चाहिए अभी आओ है कितना लोग जाओगे जाने के लिए तैयार हो तो प्रहलाद महाराज की फॉलोअर बहुत कम हो गई फिर है तो प्रहलाद महाराज स्वयं गए नहीं और उसे सभी लोग प्रहलाद महाराज के अनुकरण नहीं कर सकते हैं प्रभुपाद जी ने एक बार शिष्य ने प्रभुपाद जी कहा कि प्रभुपाद हम भगवत धाम नहीं जाएंगे हम ऐसे जन्म जन्मांतर ऐसे जन्म लेते रहेंगे और आपके साथ सेवा करते रहेंगे प्रभुपाद जी ने कहे कि माई गुरु महाराज टोल दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन एक भद्र व्यक्ति के लिए मर्त्य भूमि ये भू एक स्थान नहीं है तो मैं इधर बार बार आना नहीं चाहता हूँ। कौन कहा? प्रभुपाद ने। इसलिए भक्ति करके जाओ सब, सभी लोग प्रभुपाद की इमिटेशन मत, नहीं किसकी, प्रहलाद को इमिटेशन मत करो, सभी लोग प्रहलाद तो महाभागवत वैष्णव हैं, ऐसा ही इनकी इमिटेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चाहते प्रचार करना वो भी ठीक है, प्रचार ही सार। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे, प्रचार ही सार। महाजना जना गतस्य पंथा धर्मस्य तत्व निहितम गुहायं महाजनो जनो गतस्य पंथा। धर्म के तत्व को समझना सबके प्रति हम जैसे बद्ध जीवन के प्रति पक्ष में समर्थ नहीं है हम लोग, लेकिन महाजन के मार्ग को अनुसरण कर सकते हैं। इन्होंने सिखाया सारा जगत की, प्रहलाद ने कहे कि मैं प्रभु हे नृसिंहदेव, मैं अपने के लिए सोचता नहीं हूं, मैं तो कहीं भी रहूंगा आपके स्मरण कर सकता हूं, विष्णु स्मरण में उनके नाम है, सदा स्मरण करूंगा। लेकिन ये मूर्ख धूर्तों के लिए चिंतन करता हूं, ये जो बद्ध जीव भ्रमण करते हैं, जो आपकी भजन में नहीं, भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते हैं, ये कितनी कष्ट में भोगेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार 84 लाख जन्म में भटकते रहेंगे, इनकी चिंतन करता हूं। इसलिए प्रभु मैं आपके साथ में नहीं जाना चाहता हूं, स्वार्थ पर होकर अकेले ये सभी को लेके जाना चाहता हूं आपके साथ, ऐसा ही चिंतन। हरे कृष्ण। ऐसा ही चिंतन गोष्ठ्यानंद वैष्णव जो प्रहलाद महाराज नारद मुनि श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव की, ऐसा ही चिंतन होता है। ये स्वार्थ पर होकर अकेले केवल भगवत धाम जाना नहीं चाहते। प्रभुपाद जी तो अपने भजन करते थे कहां, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बहुत सुंदर परिवेश में भजन करके अपने स्वयं अकेले भगवत धाम चले जाते थे। लेकिन उन्होंने न्यूयॉर्क शहर जैसे है बाबरी स्ट्रीट में नर्क के समान स्थिति में जाकर भी बद्ध जीवन को उद्धार कार्य में यह संस्था को स्थापना किया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसको उनकी स्थापना किए। तो अभी तो हम सभी यहाँ देख रहे हैं, तभी हम देख रहे हैं, ये ऑडिटोरियम देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं, किसकी कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से। ये भी इसी प्रकार इन्हीं के मार्गानुसरण किए, नारद मुनि प्रहलाद महाराज और उनकी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मार्गानुसरण करते हुए, उनके आदेश पालन करते हुए प्रचार कार्य में अपने को उत्सर्ग किए। इसलिए हम सभी का भी यही कर्तव्य है, हैं? सभी को प्रचार में शामिल होना चाहिए, जिसका जितना शक्ति है, कोई गिलियारी है और कोई हनुमान है, लेकिन भगवान के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, हैं? भगवान आपकी इसे बाह्य शक्ति को नहीं देखते, भगवान आपके अंतकरण की भावना को देखते। आपका कैसा गिलियारी के मन में कैसा भावना था रामचंद्र जी को पता था, इसलिए गिलियार जी छोटा सा था लेकिन वो समुद्र में शरीर को डुबाकर गीला करके फिर बालू के ऊपर ऐसे बालू थोड़ा शरीर में लगा कर आके झड़ता था बंध के ऊपर, सोचता था कि मैं भी प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। फिर हनुमान ने सोचा था कि यार मैं पहाड़ लाकर एक डाल रहा हूँ, ये कहाँ से क्या करेगा, इससे बंध बंधेगा, चलो यहां से कभी मेरा पैर के नीचे आ जाएगा। तो वो भयभीत होकर कंप रहा था, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने बड़े आश्वासन किए, इसको उठा लिया अपने हाथ में, इसको गिलहर को इसको आश्वासन दिए, शरीर में 3 अंगुली ऐसे आज भी गिलहर के शरीर में दिखाई पड़ता है, 3 सफेद दाग। भगवान ने इसको आश्वासन दिए, हनुमान को कहे कि हनुमान तुम कैसा कहना ठीक नहीं है, तुम्हारे शरीर तुमको जो पहाड़ उठाने की शक्ति कहां से प्राप्त हुआ, तुम मेरे नाम जप करे मेरे से ही शक्ति प्राप्त किया, और गिलहरी को भी मैं जितने शक्ति दिया उसके इतना शक्ति से वो मेरा सेवा करना चाहता हूं। भगवान ही सभी करने वाले हैं, करने का है एकमात्र वही करता होते हैं, लेकिन भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जो शक्ति है उसको भगवान की सेवा में प्रचार में लगाना चाहिए। जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु हया तारो उपदेश। ये बद्ध जीव जो इतनी 2.5 करोड़ लोग बंद में रहते हैं, कितने लोग जानते हैं भक्ति के बारे में, सभी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। ये मूर्ख धूर्त इनको कहते पड़ा है, प्रभुपाद जी कहते कि नॉनसेंस रास्कल यू डोंट नो एनीथिंग है। इनकी दुख देखकर पर दुख में दुखी होना चाहिए, वैष्णव सब समय पर दुख में दुखी होते हैं, महाजन की अनुसरण करते हुए बद्ध जीव को उद्धार कार्य में लगा रहना चाहिए। इसलिए हम नगर कीर्तन में जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के जोर जोर से गाते हैं, तो इसकी जो हरे कृष्ण कीर्तन की ध्वनि जो कि जिस की कर्ण में भी प्रवेश करता है तो उसकी कल्याण होता है। इसके आगे प्रभुपाद ने किताब को लिखे, किताब वितरण करने का सिखाया। पुस्तक को जो पढ़ेगा वो अवश्य भक्त बनेगा। कई उदाहरण है, कितने लोग प्रभुपाद जी की किताब पढ़कर हजार हजार लोग आज विश्व में लाखों संख्या में लोग भक्त बने हैं। एक स्लीपिंग बैग के अंदर में गीता चला गया रशिया में। रशिया में जब प्रभुपाद जी ने गए 7 दिन के लिए, सिर्फ रशिया में इनको था विषय था, 7 दिन के लिए गए थे, होटल में बुकिंग करके थे। रशिया के अंदर उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, कोई भी लिटरेचर अलाउड नहीं था, उसके अंदर कुछ भी नहीं ले सकते लिटरेचर। लेकिन प्रभुपाद जी के साथ में जो उनके सेक्रेटरी स्वामी सुंदर प्रभु गए थे, उनकी पत्नी मालती माता जी गई थी, तो उन्होंने अपने स्लीपिंग बैग के अंदर एक छोटा गीता रख के, प्रभुपाद जी की गीता रख के फोल्डिंग करके ले गए बस। तो वही गीता से विप्लव हो गया, वो गीता फिर रशिया में प्रिंटिंग हो गया। पर बस प्रभुपाद जी 7 दिन रहे और ऐसा ही तो 4 दिन बीत गया, कोई नहीं आया प्रभुपाद को मिलने के लिए, अकेले बैठे थे होटल के कमरे में। लेकिन 4th दिन में हैं इनके सेक्रेटरी की खाना ढूंढते थे, पर चावल दाल या इंडियन खाना वहां भी नहीं मिलता था। और एक व्यक्ति देखा मार्ग पर चलते हुए, भारत के जो एम्बेसडर का लड़का था, भारत की तरफ से जो रशिया में एम्बेसडर था, और उसके साथ में एक रशियन था, दोनों साथ में दोस्त थे, तो चल रहे थे। और ये देखिए कि अरे भारतीय की दिख रहा था, भारतीय जैसे, तो उसको कि आप यू आर फ्रॉम इंडिया, बोला हाँ हाँ मैं इंडियन हूँ, मैं भारत का जो राजदूत है एम्बेसडर है रशिया में उसका लड़का हूँ। तो बोले हमारा गुरु भी इंडिया के हैं, श्याम सुंदर प्रभु को हमारा गुरु भी इंडिया में है, भारत के हैं, लेकिन हम गुरु जी चावल राइस खाते हैं, राइस यहाँ तो कोई राइस नहीं मिलता, कोई दुकान आपको पता है ऐसा कहीं राइस मिलेगा? तो कहे कि मैं हमारे घर में है राइस, मिला दूंगा हमारे घर से राइस डाल सो सब्जियां ला दूंगा। लेकिन उनको बोला कि ठीक है अभी चलिए हमारे गुरु जी को मिलते हैं, तो उनको लेकर रहे आ गए। 4 दिन में 4th दिन में 2 लड़के आए प्रभुपाद जी को, उनके सेक्रेटरी लेकर आए मिलाने के लिए। प्रभुपाद जी ने देखे कि बड़े प्रसन्न हो गए, हमसे 2 लोग क्या है प्रचार करना, लेकिन प्रभुपाद जी ने दोनों को बैठाए और बोलते प्रचार करते रहे इनकी कृष्ण भावना के बारे में, कलयुग की स्थिति और कलयुग के उद्धार होने का उपाय। ये जो एम्बेसडर का लड़का था बोला अरे ये सब मैं बहुत सुना, वो तो अनमनस्क था, इधर उधर घूम रहा था, लेकिन वो रशियन लड़का था, बड़े ध्यान से सुनता था, क्योंकि कंट्री में ऐसे ज्ञान कोई नहीं बताता था, तो कम्युनिस्ट का देश था। प्रभुपाद जी बोलता थे, बड़ा ध्यान से सुना है। और 2 दिन बाद प्रभुपाद जी के साथ पास में आया, क्योंकि प्रभुपाद जी फिर वापस आना था। प्रभुपाद जी ने कई घंटों में इसको प्रचार करके ही भक्त बना दिए, क्योंकि प्रभुपाद जी की शुद्ध इच्छा था ये भक्त बन जाए, जैसे प्रहलाद नारद जी की इच्छा था कि प्रहलाद भक्त बन जाए। शुद्ध भक्त की इच्छा होने के कारण वो एक ही बीज प्रभुपाद जी ने डाल के आया है, उसका नाम दे, इसको दीक्षा भी दे दिए। वही कई घंटे में अंदर उसको प्रचार करके उसको मैंने हरे कृष्ण मंत्र जपा करना सिखा दिए, उसको माला दे दिए जप के, उसके नाम भी दे दिए अनंत शांति नाम देकर उसको आ गए। वो एक ही बीज डालकर आ गए थे रशिया में, आज रशिया में देखो हैं लाखों संख्या में भक्त हैं। वो सब हिंदू नहीं थे जन्म से, रशिया में केवल देव रिलीजन के लोग रहते हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम, वहां पर कोई हिंदू कोई नहीं थे। आज ये सब जो भक्त बन रहे रशिया में लाखों संख्या में, ये कौन है? मुसलमान है और क्रिश्चियन थे परंपरा से इनकी पहले से, वो सब ये भक्ति स्वीकार करके ही नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप सभी भी प्रयास करोगे तो भारत का भी बदल जाएगा, भारत भी है। यदि आपके पास में ऐसे सीरियस है, आप यदि प्रकृति में जनताओं के कल्याण करना चाहते हो, इसके प्रचार में निकलना चाहिए, प्रचार ही सार। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भी नृसिंहदेव को मना कर दिया, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु जी की मार्गानुसरण करते हुए मैं प्रचार करते रहूंगा। यही महाजनों की विचारधारा है। नृसिंहदेव ने बहुत लोग देखाया, प्रहलाद कुछ बर मांगो मांगो कुछ मांगो मांगो, तुम मेरी भक्ति किए हो, मरे जा भक्ति करता, मेरे दर्शन करता है, निष्फल नहीं जाता, कुछ भी मांग लो। प्रहलाद ने कहे कि मुझे लोभ क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे ही तो राक्षस घर में जन्म हुआ हूं, मेरा मति बिगड़ा हुआ है, तो आप फिर मुझे भौतिक लोभ क्यों दिखा रहे हैं? आपकी कुछ लेने देने के लिए, ऐसे व्यापार करने के लिए भक्ति नहीं किया है? नौ सा भक्त सभी बड़ी, जो आपकी भक्ति करता है वापस में कुछ मांगता है, भक्त नहीं कहलाता है, वो तो व्यापारी है, है? कुछ देना और कुछ लेना। मैंने तो आपकी भक्ति किया हूं, है? आपकी भक्ति किया हूं आपको ही प्रसन्न करने के लिए, इसलिए ऐसे लोग मुझे मत दिखाइए। यदि आप बार बार कहते कुछ देना देना लेना, लेकिन मेरे पुत्र हूं, पुत्र के नाते मेरे पिताजी को उद्धार करना मेरा धर्म है। पुत्र का शब्द का अर्थ ही, पू शब्द का अर्थ ही नर्क, त्र का अर्थ नर्क से त्राण करना, नर्क से उद्धार करना। जो पितरों को नर्क से उद्धार करता है उसको पुत्र कहते हैं। से प्रहलाद महाराज के पुत्र के रूप में मेरे कर्तव्य है कि मेरे पिता को जन्मुक्त संसार से मुक्त करना, वैकुंठ में भेजना। इसलिए हे प्रभु, उसने बहुत आपको ईर्ष्या किया है, आपके प्रति बहुत अन्याय किया है, हैं? आपको दुर्व्यवहार किया है, लेकिन फिर भी आप कृपा करके उसके सारे अपराध क्षमा कर दीजिए और इसको आपके परम धाम वैकुंठ में भेज दीजिए, हैं? जिसे मुड़ को मर्डर करना चाहता था प्रहलाद को, फिर वो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं भगवान को। भगवान कहते कि प्रहलाद, तुमको ऐसे वर मांगने की आवश्यकता नहीं है। जिस परिवार में तुम जैसे भक्त का जन्म हुआ है, इस परिवार में 21 पीढ़ी तो ऐसा ही मेरे धाम में जाते हैं, हैं? इसलिए प्रभुपाद जी ने जब जाते थे भ्रमण करते थे, कहते थे देखो किसके घर में चार लड़का है, तीन लड़के चलो तुम घर में रखो, एक लड़के तो मुझे दे दो इस कन में, मैं इसको भक्ति सिखाऊंगा और भक्त बनेगा तो तुम सभी के कल्याण होगा। लेकिन फिर भी कोई देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हैं? तो सिर्फ आप सब भक्त हो तो कम से कम भक्त बनाओ। प्रभुपाद जी को भक्ति कौन सिखाया? यदि वो नित्य सिद्ध थे, लेकिन फिर भी एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनके पिताजी ने सिखाया, कौन? गौड़ मोहन डे। बचपन से छोटे बच्चे थे तो उनको तभी से राधा कृष्ण की डेटी खेलने में दिए थे। हम तो भी बच्चों को खेलने के लिए क्या देते हैं? कुत्ता डोल ले आते, कुत्ता का डोल और कढ़ाई देख देते, गन देते थे, बंदूक है, बंदूक कुत्ता। अरे वो बंदूक कुत्ता ही बचपन से जो खेलेगा उसका चेतना ऐसे ही होता है, हैं? बड़ा हमें भी वो बंदूक दिखाएगा दूसरे को, है? और घर में लाके कुत्ता रखेगा, हैं? अरे अज्ञानी भी जैसे पापी था सत्य, वो भी अपने बच्चे के नाम क्या रखा था? नारायण। वो भी हम अपने बच्चे के कैसे नाम रखते गए? कुल्लू मुल्लू टुल्लू पिंकू टिंकू, हैं? ऐसे कुल्लू कुल्लू कुट्टू कुट्टू को कहेगा तो क्या आपको विष्णु आएगा आपको रखा करने? जमदूत किसे से हमारा चेतना कितने नीचे गिर चुका है, हैं? और जम्बी से भी जगाई माधाई है ते आनी से पापिष्ट, इससे भी पापी हम बढ़ गए। जगाई माधाई थे कम से कम कहे थे कि हम पाप नहीं करेंगे, फिर दोबारा नहीं किए, जो किए थे किए थे बस। जो महाप्रभु की शरण में आए, महाप्रभु कहेंगे और पाप नहीं करना, तुम्हारे जितने पाप सब मैं ले लिया। हम तो दीक्षा जब लेते तो गुरु तो सब हमारा पाप ले लेते, लेकिन गुरु कहते कि दुरा पाप नहीं करना, लेकिन हम फिर भी इसको पालन नहीं कर पाते, हैं? तो इसलिए जानना चाहिए कि हमारा चेतना कितनी गिर चुका है। प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य बनता है बच्चों को घर में बचपन से भक्ति सिखाना। प्रभुपाद जी ने भक्त मैंने गौर मोहन डे ने बचपन से अपने लड़का को सिखाया था भक्ति, हैं? अभय चरण को भक्ति सिखाए थे बचपन से, इनको राधा कृष्ण डटी खेलने खेलने दिए थे। थोड़े बड़े हो गए थे, इनको स्कूल में पढ़ रहे थे तो 8-10 साल की उम्र में हो गए, तो इनको क्या सिखाया? जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करना, छोटा रथ बनाकर इन्हें दे दिए रथ बना चलाने के। कलकत्ता की गली में बच्चों के साथ में रथ बना चलाते थे। अब बड़े हो गए तो वो जो राधा कृष्ण की सेवा बचपन में करते थे, वही राधा कृष्ण की मंदिर पूरा विश्व में बनाए। वही जो रथ यात्रा पिताजी ने सिखा रहे थे तो बचपन में वही रथ यात्रा पूरा दुनिया में चलाए, प्रत्येक शहर में, हैं? वही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सिखाए। अरे बच्चों को, हरे कृष्ण, बच्चों को जो संस्कार बचपन में दोगे वही भविष्य में करेंगे, हैं? ये सारे जमींदारी किसके पास है? माता पिता की है। माता ने पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, गुरु न सस्यात, हैं? इसको कहा गया राजा न उस जमींदारी है बच्चों को जन्म करके है जन्म देना और इनको भक्ति भी सिखाना, ये जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति गौर मोहन डे ने अपने लड़का को भक्ति सिखाया और उन्होंने सारा भक्ति के प्रचार दुनिया में किया। तो आप यदि सभी अपने अपने बच्चों को सही भक्ति सिखाओगे तो वो सभी प्रचारक बनेंगे, तो फिर कितने ऐसे विश्व कैसे ऐसा रह सकता है, हैं? सर्वत्र लोग फिर भक्ति करने लगेंगे, इसलिए जिम्मेदारी है, हैं? बच्चों को क्या सिखाना? भक्ति। भक्त बनने से आपके कोई नुकसान नहीं है, आपकी जो असली जो पुत्र का जो लक्ष्य, पुत्र आप किस लिए चाहते हैं वो भी पता नहीं लोगों को। पुत्र इसलिए चाहते कि नरक से उद्धार करेगा, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, चाहे हम नहीं जा पाए भगवत धाम, लेकिन पुत्र की छोड़ देंगे तो पुत्र अपने भक्ति करके हमको उसके भक्ति के बल पर हमको भगवत धाम ले जाएगा, भगीरथ एकले तपस्या किया तो गंगा को लेके आया, आज भी हम लेकर गंगा अस्थि डालते, गंगा अस्थि मैंने कोई शरीर कोई मर जाता तो घर में तो उसका अस्थि लेकर गंगा में डाल देते हैं। सोचते कि भगीरथ के पूर्वजों की अस्थि से गंगा में बह गया तो उद्धार हो गए थे हम भी हैं। तो इसलिए असली पुत्र किसलिए हम चाहते, पुत्र इसलिए चाहते कि जो पितरों को नर्क से हमको उद्धार करें, तो इसलिए उसको भी स्टैंड अप करना पड़ेगा है, भक्ति सिखाना पड़ेगा। गौर मोहन दो ने अपने पुत्र को सिखाया, भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को सिखाया, भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति सिखाया है। तो आप सभी तिलक कंठी धारण करके ही दीक्षित भक्त है, तो आपको भी ये कर्तव्य बनता है बच्चों को भक्ति सिखाना। संध्या मर्ग के स्कूल में तो जाते ही है, पढ़ाए नहीं है ना है? ये सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, ये सारे संध्या मर्ग के स्कूल है, ये भक्ति नहीं सिखाया जाता, भगवान की भक्ति कोई सिखाता है नहीं। लेकिन फिर भी हम इनको भेजते उसमें ठीक है सीखे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहते कि नुकसान नहीं है, पढ़ाई करने से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नुकसान नहीं होता है, क्योंकि प्रचार उनको भी करना है। और कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जाकर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी इंस्टीट्यूशन में आप प्रचार करना है तो आपके पास में डिग्री होना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं जा पाओगे उसे है, नहीं छोड़ेगा आपको। आईआईटी का कॉलेज आईआईटी में जाकर प्रचार करना है तो वो पहले बोलेंगे तुम्हारा बायोडाटा क्या है, आपके पास में भी डिग्री होना चाहिए है। इसलिए प्रभुपाल ने अपने शिष्यों को भी भेजते थे आप भी जाओ डिग्री ले लो, और डिग्री लेके फिर प्रचार करना है। डिग्री इसलिए लेना प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, एक इंजीनियर ही दूसरे इंजीनियर को प्रचार कर सकता है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को प्रचार कर सकता, एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को प्रचार कर सकता। इसलिए प्रभुपाल ने कहते कि इनको भी जरूरत है। इसलिए भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट प्रभुपाल ने बनाया वैज्ञानिक लोगों को प्रचार करने के लिए, इसलिए प्रचार ही सार। लेकिन हम इसे ही अपने अपने संतान को इसे ही प्रहलाद की तरफ बनाए। प्रभुपाद जी जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी जैसे इस संस्था को खोला है सारा जगत के कल्याण के लिए, उनकी भावधारा भी प्रभु किसकी तरफ, प्रहलाद महाराज की तरफ। इसलिए आधुनिक जगत के नारद मुनि भी कहा जाता है, किनको, श्री प्रभुपाद जी को। ये नारद मुनि की तरफ प्रहलाद महाराज की तरफ पूरा विश्व में भ्रमण किए, हरे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को प्रतिष्ठित किए, सर्वत्र प्रचार किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।